ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुःवन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सबको कृष्ण रसायनम के सत्र में स्वागत करते हैं। पिछले सत्र में हम लोगों ने भागवत के पहले स्कंद के 18वां अध्याय लगभग 32 श्लोक तक हमने पूरा किया। तो उसमें महत्वपूर्ण सर्वप्रथम हमने एक विषय सीखा, नोत्तम श्लोक वार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् संभ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरताम तत्पदाम्बुजम, इस तरह के एक श्लोक पढ़ा हमने। जो लोग अपने हर सांस में भक्ति करते हैं, नित्य रोज भक्ति करते हैं, हर क्षण भगवान का स्मरण करते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के समय किसी भी तरह का भ्रम नहीं होगा उनको, क्योंकि मृत्यु के समय भगवान अपने आप उनको स्मरणा शक्ति दे देंगे। इस तरह उस श्लोक में हम पढ़ते हैं, परीक्षित महाराज भी पांडवों के वंश में एक सुपुत्र बनकर अभिमन्यु के वो उनकी गुणगान सुनते हैं। हम एक अध्याय में पढ़ेंगे उनके जन्म के बारे में, उनके विविध गुण। उनके जन्म भी बहुत दिव्य है, क्योंकि भगवान हरि उनके माँ के गर्भ में प्रवेश करके गोल गोल घूमकर परीक्षित को रक्षा किया उन्होंने, इसलिए उनका नाम पड़ा विष्णुरात। विष्णु ने रक्षा की उनकी। उनकी मृत्यु भी बहुत यशस्वी मृत्यु है, क्योंकि उनके अंतिम काल में भगवान ने उनके तारीख फिक्स किया था, इस दिन 7 दिन के बाद परीक्षित शरीर छोड़ेगा, लेकिन 7 दिन भागवत कथा होगी, भगवान की कथा होगी, परीक्षित गंगा के तट में बैठ कर सुनेगा। तो इस तरह परीक्षित भगवान के हाथ में एक निमित्त बनकर सारे दुनिया के हम लोगों को भागवत प्रदान किया, इसलिए उनकी मृत्यु भी मंगलमय है, उनके जन्म भी मंगलमय है, और उनके जीवन चरित्र को भी पढ़ेंगे आप। उन्होंने कलिराज को दमन करके अपने राज्य में अंदर घुसने नहीं दिया, इसके एकदम विरुद्ध उनके सारे दुनिया के राज्य में संकीर्तन को फैलाया उन्होंने। इस तरह संकीर्तन को फैलाकर सारे उनके प्रजा को भगवान के दिव्य स्मरण में डुबो कर रखा उन्होंने ऐसे। इसलिए उनके जन्म, उनके मृत्यु, उनके कार्यकलाप सब दिव्य माने गए हैं परीक्षित के। बहुत श्रेष्ठ उच्च कोटि के भक्त हैं परीक्षित। तो हम इनके संबंध में इस 18वें अध्याय में ऐसे ही हमने शुरू की थी कि परीक्षित अपने मृत्यु को रोक सकता था, एक प्रतिशाप दे सकता था, लेकिन दिया नहीं उन्होंने। तो पिछले सत्र में हमने पढ़ा कि ऐसे राजा परीक्षित जो यशस्वी राजा था, वो जंगल में एक बार जाते समय उधर जैसे कुछ जंगल के प्राणियाँ जैसे बाघ शेर इत्यादि को शिकार करके उन दिनों में राजा लोग मारते थे, क्योंकि अगर जंगली प्राणियों का संख्या बढ़ जाता था तो ऋषि मुनियों को भी तकलीफ होता था। उधर कभी कभी ऋषि मुनियों को खा डालते थे वो, उनकी संख्या अगर बढ़ गया तो इसके कारण राजा लोगों को शिकार करने के लिए अनुमति है, और वह जंगल में जाकर शिकार करके पसीना छूटने लगा, बहुत बहुत प्यास लगा उनको, भूख लगा, प्यास लगा। तो वही एक कुटिया में जा पहुँचे जिसके बाहर एक ऋषि बैठकर आंख बंद करके तपस्या के मुद्रा में बैठे थे वो। तो परीक्षित को बहुत प्यास लगा, ऐसे बताया गया उधर। तो परीक्षित ने देखा कि ये ऋषि ऐसे ही बैठा है, राजा आने के बाद उनको पानी नहीं दिया, कुछ भोजन नहीं दिया, मीठे शब्द नहीं बोले, स्वागत नहीं किया, बिठाया नहीं, तो इस तरह ऐसे ही आंख बंद करके बैठा है। तो परीक्षित को लगा कि ऐसे कुछ नाटक कर रहा है, तो वो कुपित होकर उन्होंने एक मृत सांप को लेकर उनके गर्दन में गले में डाल दिया, और उधर से ऐसे करके वो निकल गए। निकलने के बाद अपने महल में आ पहुँचे तब बैठकर वो सोच रहे थे कि लगता कि मेरे हाथ से कुछ बड़ा गलती हो गया है, मैंने ऐसे जो मुनि बैठे थे हो सकता है कि वो समाधि में हो, क्या वो नाटक कर रहा था, नहीं था वो समाधि में था हमको पता नहीं, अगर वो असली में समाधि में था तो ये तो ब्रह्म अपराध हो जाएगा, एक ब्राह्मण को निंदा करने की अपराध हो जाएगा, ऐसे उनको बहुत पश्चाताप हुआ। और ऐसे राजमहल की ओर आते आते अपने मन ही मन परीक्षित ने सोचा कि अगर मैंने कुछ गलत किया हो, मेरे धर्मपत्नी बच्चे और मेरे माता पिता इन लोगों को तकलीफ ना हो मेरे कारण, जो भी तकलीफ भुगतना हो मैं अकेले भुगतूंगा, मैं अगले भोगूंगा उसको। इसलिए भगवान मेरे ऊपर अगर कुछ कुछ ब्रह्म श्राप भी आना हो मैं उसको सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ, ऐसे उन्होंने अपने मन ही मन सोचा। तो हम लोग बहुत समय बिताया पिछले सत्र में यह बात समझने के लिए कि परीक्षित तो सिद्ध भक्त था भगवान के, पांडवों के वंशज था, और उनके चरित्र में अभी तक एक भी लेश मात्र भी एक दोष नहीं है कि उन्होंने किसी ब्राह्मण को निंदा किया, उन्होंने किसी को अपमान किया, ऐसे कुछ कभी नहीं है उनके चरित्र में। वो ब्राह्मणों को, वैष्णव को, हरि गुरु वैष्णव को हमेशा आदर दिया है। वो ऐसे कैसे हो गया अचानक एक ब्लैक रिकॉर्ड हो गया उनके अकाउंट में, ऐसे कोई पूछ सकता है? इसलिए पिछले सत्र में हम लोग इस विषय के ऊपर हमने समय बिताया। हमने ये बात चर्चा की कि भगवान अपने भक्तों को एक निमित्त बनाकर इस दुनिया में निमित्त बनाकर क्या करते हैं, भगवान इस दुनिया के लिए कुछ भलाई करते हैं। जैसे मैंने बोला अर्जुन को भगवान ने निमित्त बनाकर बोला कि अर्जुन तुम अभी मोहग्रस्त हो जाओ। अर्जुन बोला मैं तो मोह में नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि आप ही परम सत्य हो, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। लेकिन भगवान ने बोला नहीं नहीं अभी थोड़ा नाटक करना पड़ेगा तुमको, भगवद गीता भी चालू करना है अभी, इसलिए तुम भगवद गीता चालू करके शुरुआत में तुम नाटक करो कि तुम मोह में हो, और भगवद गीता के अंत में बोलने का अभी मोह से मैं बाहर निकल आया, अभी नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान माया अच्युत स्थित अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, आपके वचन को निभाऊंगा ऐसे। तो भगवान ने निमित्त बनाया अर्जुन को, इसी तरह भगवान ने अनेक शुद्ध भक्तों को निमित्त बनाया है। देखिए भगवान भी अपने भक्तों के सामने झुकते हैं, जैसे बंदे जाते हैं यशोदा से दामोदर जी है ना, और भगवान अर्जुन के सारथी बनकर आते हैं युद्ध भूमि में, इस तरह भगवान अपने आप को भक्तों के दास बना लेते हैं। इसी तरह भगवान के भक्त भी भगवान के हाथ में कठपुतली बनकर किसी भी तरह का नाटक करने के लिए तैयार हो जाते हैं भक्त भी। इसलिए परीक्षित को भगवान ने ऐसे एक निमित्त बनाया। तो आज हम 33वां श्लोक पढ़ेंगे जिधर एक समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी अपने बाकी मित्रों के साथ वो खेल रहा था, अचानक उसको संदेश मिल गया कि परीक्षित राजा आया था उनके पिताजी के कुटिया में, उन्होंने एक मृत सर्प को डाल दिया उनके गले में, इस तरह उनको पता चला। अभी वो बोल रहा है वो श्रृंगी, अहो अधर्म पालानाम पीमणाम बलि भुजामिव स्वामिन्यघम यद्दासानाम द्वारपानाम शुनामिव। हाँ पढ़िए 33rd श्लोक ट्रांसलेशन हिंदी में है, हिंदी कौन पढ़ते हैं हर बार, हिंदी में है क्या है 33rd श्लोक अनुवाद, हु कैन रीड हिंदी वेरी नाइसली, कोई आइए इधर आइए सामने बैठे। हाँ पढ़िए अनुवाद। ब्राह्मण के पुत्र श्रृंगी ने बोला,
ब्राह्मण बालक श्रृंगी ने कहा, अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौवों तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढाते हैं।
हाँ देखिए इधर श्रृंगी अपमान कर रहा है, बोल रहा है कि राजा को बोल रहा है कि कौवा जैसा है और पालतू कुत्ता है, ऐसे ये क्यों ऐसे बोल रहा है? देखिए ब्राह्मण लोग उन दिनों में वो लोग यज्ञ के लिए घी रख देते एक द्रोण में, कभी कभी उड़ने वाला कौवा आकर उसको उठा कर लेके जाता था वो, नहीं तो द्वार में रहने वाला कुत्ता अगर घर के अंदर आ गया आकर वो घी को पी लेता है, नहीं तो उठा लेता तो गंदा हो जाता है। तो इस तरह वो बोल रहा है कि भाई क्षत्रिय लोगों का कर्तव्य है ब्राह्मणों को बचाना, सुरक्षा प्रदान करना, उनको दान वगैरह देना। लेकिन आप लोग पालतू कुत्ता जैसे हो करके उनकी निंदा कर रहा है श्रृंगी। कुत्ता तो सुरक्षा प्रदान करता है भौंक भौंक कर, हाँ, इस तरह क्षत्रिय भी ब्राह्मणों के और बाकी जनता का भी सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन उनको पालतू कुत्ते करके बोलकर अपमान करना ये सही बात नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी अनकल्चर्ड लिखते हैं, असुसंस्कृत व्यवहार प्रदर्शित किया। किसने? श्रृंगी ने। देखिए श्रृंगी से हम ये बात सीखते हैं किस तरह हम लोग आपस में बोलते समय गंदे बातें बोलना नहीं चाहिए, गाली नहीं जाना चाहिए किसी को, और अप शब्द नहीं बोलना चाहिए दूसरों से भी। क्योंकि कभी कभी हम लोग वैष्णव बनने के पहले हम ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार में कभी कभी सब लोग झगड़ा करने वाले झगड़ालू परिवार हैं। कुछ कुछ परिवार झगड़ालू परिवार है। कभी कभी पुरुष चिल्लाता है हॉल में और पत्नी किचन में होती है, वो बोलती है अभी थोड़ा कुकिंग करके आती हूँ, थोड़ा वेट करो आकर मैं, लेकिन वो रुकता नहीं, चिल्लाता रहता है तो अंदर से बेलना फेंक देती है वो। ऐसे हैं इस तरह कुछ घर में झगड़ालू घर होता है। अगर कोई वैष्णव ऐसे घर में थे पहले, अभी वैष्णव बन गए तो तिलक पहन लेते हैं, कंठीमाल आ जाता है, लेकिन मुँह में ऐसे शब्द निकलते हैं जो निकलना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोगों को थोड़ा हमारे इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा। अगर किसी का आदत हो इस तरह के अपशब्द बोलना तो उनको आदत को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि इधर श्रृंगी देखते हैं अगर किसी को थोड़ा डांटना भी हो इस तरह के अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अगर मैं किसी को बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा आलसी हो, आप सेवा नहीं करते हो, ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे तुम भैंस जैसे आलसी हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो निंदा हो जाएगा, वैष्णव निंदा हो जाएगा। मालूम है सब लोगों को कि भैंस आलसी है, लेकिन वैष्णव को भैंस से तुलना नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस तरह ये तुलना कर रहा है कुत्ते से कौवे से, इस तरह ये सही चीज़ नहीं है, नहीं करना चाहिए वैष्णव को। इसलिए वो तात्पर्य में 10-15 लाइन के बाद आप पढ़िए, प्रभुपद जी लिखते हैं हियर इन श्रृंगी ए क्वालिफाइड सन ऑफ अ ग्रेट ब्राह्मणा। पढ़िए दैट इज 10-12 लाइन्स फ्रॉम बॉटम, 10-12 लाइन्स फ्रॉम द एंड ऑफ द परपोर्ट। श्रृंगी इधर श्रृंगी ऐसा शुरू होता है। यहाँ
पर महान ब्राह्मण के योग्य पुत्र श्रृंगी ने जन्म से तथा प्रशिक्षण दोनों से अपेक्षित ब्राह्मण शक्ति प्राप्त कर ली थी, किंतु उसमें संस्कृति का अभाव था क्योंकि वह अनुभवहीन बालक था। कली के प्रभाव से यह ब्राह्मण बालक अपनी ब्राह्मण शक्ति से गर्वित हो उठा और गलत ढंग से महाराज परीक्षित की तुलना कौओं तथा रखवाले कुत्तों से कर बैठा। राजा निश्चय ही इस अर्थ में राज्य के रखवाले कुत्ते की भांति ही होता है क्योंकि उसे सीमा की सुरक्षा के लिए उस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है, तथापि उसे कुत्ता कहकर संबोधित करना अल्पसभ्य बालक का द्योतक है। इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का पतन तब से प्रारंभ हुआ जब वे संस्कृति के बिना जन्मसिद्ध अधिकार पर बल देने लगे। ब्राह्मण जाति का पतन कलयुग में शुरू हुआ चूंकि ब्राह्मण समाज व्यवस्था के प्रमुख होते हैं, अतएव समाज के अन्य वर्ण भी पतित होने लगे। ब्राह्मणों के पतन का यह सूत्रपात श्रृंगी के पिता के लिए अत्यधिक पश्चाताप का कारण बना, जैसा कि हम आगे देखेंगे।
देखिए आजकल के जमाने में लोग ये कैस्ट सिस्टम जो है, कैस्ट होता है ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र, इसके एकदम विरुद्ध हैं आधुनिक इंसान। वो बोलता है कि इस तरह जाति पाति को खत्म करो, हैं सब लोगों को समान आदर दो करके। लेकिन आप देखेंगे ऐसे किसी भी कंपनी में जाइए, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, वो जो लोग बुद्धिमान उन लोगों के लिए वो डिपार्टमेंट है। और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होता है, एडमिन बिल्डिंग, वो क्षत्रियों के लिए है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग होता है, वो वैश्यों का है। और मशीन्स में अनेक लोग काम करते हैं, वो शूद्रों का है। आजकल के कंपनियों में भी इस तरह के चार वर्ग के लोग देखे जाते हैं। इस तरह हमारे शरीर में सर जो है वो ब्राह्मण से तुलना किया है, और भुज जो है भवें बोलते हैं इसको, भवें जो है वो क्षत्रिय से, और पेट वैश्य से, और पांव शूद्र से। इसका मतलब क्या है? देखिए ये चारों चीज मिलकर शरीर बनता है। शरीर तंदुरुस्त रहना हो तो बुद्धि जो है वो मार्गदर्शन देना चाहिए, हाँ, और भव में जो है अगर कुछ मेरे ऊपर गिर रहा हो तो उससे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, और पेट जो है वो भोजन को पचकर वो सारे शरीर को पोषण देता है वो पेट। इस तरह पांव जो है शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान, पेट को भी, बाहुएं को भी और सर को भी, तीनों को लेके जाता है पांव। इसी तरह एक समुदाय में, समाज में चार लोग, चार वर्ग के लोग होते हैं। अभी वैश्य लोग जो होते हैं वो पैसा कमाकर राजाओं को कर देते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं और शूद्रों को रोटी कपड़ा मकान देते हैं, इसलिए वो पेट से तुलना किया है उनका। और क्षत्रियों को बाहुएं से, बाहु से, क्योंकि वो सुरक्षा प्रदान करते हैं शरीर को। और ब्राह्मणों को सर से क्यों तुलना किया है, वो विजन देते हैं, विजन दृष्टि देते हैं समुदाय को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। साथ साथ ब्राह्मण लोग जनता से सुनते हैं कि उनकी शोक क्या है, समस्या क्या है, वो सुनते हैं। और जिस तरह किचन में, रसोई घर में कुकिंग करते समय कुछ जल जाता है तो कुछ लोगों का नाक एकदम लंबा होता है, वो तुरंत समझ लेते हैं कि कुछ जल रहा है अंदर। इस तरह ब्राह्मण लोग समुदाय में होने वाले अच्छे बुरे चीज़ उनको, उसको स्मेल कर लेते हैं, समझ लेते हैं और मुँह से वो उपदेश देते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को सर से तुलना किया है। और शूद्रों को पांव से क्यों तुलना किया है, पांव सारे शरीर को लेके जाता है। इस तरह शूद्र लोग ब्राह्मणों को ये जो लकड़ी होता है उसको उठाने के लिए मदद करते थे। और क्षत्रियों के साथ इसमें युद्ध भूमि में क्षत्रियों के साथ जुड़कर वो फुट सोल्जर बनते थे शूद्र लोग ऐसे, और सैनिक बनते थे वो। और वैश्यों के काम धंधे में शूद्र लोग भी साथ में उनका भी सहायता देते थे, वो तीनों को देते थे ऐसे, इसलिए ऐसे तुलना किया है। हालांकि बताया गया है कि ब्राह्मण जो है तीनों वर्ग के लोगों को नेतृत्व करके उनको उपदेश देना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को गर्वित नहीं हो जाना चाहिए। इधर श्रृंगी गर्वित हो गया, इसके कारण पढ़ा लिखा तो था लेकिन गर्व के कारण उसके अंदर संस्कृति नहीं था, ऐसे बताते हैं। तो ये समझने की बात है हम लोगों के जीवन में भी। हम लोगों को दो चीज चाहिए, सिद्धांत जानना आवश्यक है, साथ साथ सदाचार भी चाहिए। हरिदास ठाकुर को सनातन गोस्वामी ने बोला, हे हरिदास ठाकुर ने ये सनातन गोस्वामी बोले कि देखो इस दुनिया में कुछ लोग अच्छा प्रचार करते हैं लेकिन उनका आचार ठीक नहीं है, कुछ लोगों का आचार एकदम सज्जन के बराबर है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं कुछ भगवान के बारे में, लेकिन जो आचार और प्रचार दोनों करता है वो सारे दुनिया के गुरु बन सकता है, ऐसे बोला उन्होंने। तो हमारे जीवन में हमको क्या चाहिए, आचार चाहिए प्रचार चाहिए, दोनों चाहिए ऐसे बताते हैं। क्योंकि अगर कोई बड़े पंडित है, पढ़ा लिखा है बहुत, लेकिन उसका बोलचाल ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, आचार ठीक नहीं है, तो कोई उसे सुनना नहीं चाहेंगे, लोग बोलेंगे कि इसके मुँह से अमंगल चीज़ें निकलते हैं, कोई सुनेंगे नहीं, उसका व्यवहार ठीक नहीं है बोलेंगे ऐसे। अगर किसी का व्यवहार बहुत अच्छा तो लोग उसको बहुत मनाएंगे लेकिन वो सिखा नहीं पाएगा, भक्त नहीं बना पाएगा वो। इसलिए हमको दोनों चाहिए, आचार और प्रचार दोनों चाहिए हमको। तो इस तरह ये हम श्रृंगी से सीखते हैं क्या नहीं करना चाहिए, हम सीखते हैं इस श्लोक में। तो आगे जाकर बताते हैं ये 34 श्लोक में, अगले श्लोक में, ब्राह्मणे हि क्षत्र बंधुर्हि गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्तः सभाण्डं भोक्तुमर्हति। अनुवाद पढ़िए।
राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई है और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए, तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते हैं?
थाली से निंदा कर रहा है परीक्षित के बारे में। देखिए परीक्षित शुद्ध भक्त है और सारी दुनिया का राजा भी है। अगर वो आ पहुंचा समीक ऋषि के द्वार में थोड़ा पानी पीने के लिए, तो राजा को तो लोग बहुत सम्मान देते थे उन दिनों में। जैसे आप लोग जानते हो कि नवाब हुसैन शाह नाम के राजा के अंडर में दो लोग रहे, रूप सनातन दोनों। रूप सनातन तो कर्नाटक के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे वो लोग, लेकिन नवाब हुसैन शाह को पता चला कि ये दोनों ब्राह्मण बड़े बुद्धिमान हैं, उनके समुदाय के नेता हैं, तो उनको पता चल गया, वो दोनों को बुलाया, बोला कि देखो या तो तुम मेरे अंडर में मिनिस्टर बनकर रहो, एक को मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनाऊंगा, दूसरा है कौन है होम मिनिस्टर है, ऐसे बना दूंगा तुमको, तुम्हारा खुद का महल दूंगा, पैसा बहुत धन दौलत दूंगा तुमको, मेरे साथ काम करो, अगर नहीं करोगे तो मैं सब हिंदुओं को सताऊंगा, ऐसे उन्होंने बोला था। तो दोनों ने सोचा कि अगर हम इस नौकरी में नहीं जुड़ेंगे तो हिंदुओं को सताएगा बहुत ये मुसलमान राजा, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है हम शामिल हो गया उन्होंने नौकरी में, कुछ साल के लिए नौकरी किया उनके साथ। राजा ने भी उनको बहुत उनको स्वतंत्रता दिया उनको, क्योंकि उनके राजमहल के पीछे एक बगीचा था, उधर गुप्त वृंदावन बनाया था उन्होंने, उधर गुप्त वृंदावन जैसे ऐसे बनाकर वो लोग गीता भागवत वगैरह पढ़ते थे, बहुत पढ़े थे, पढ़े लिखे थे भागवत में। लेकिन कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जुड़कर सेवा देने के लिए रूप गोस्वामी छोड़कर भाग गए। तो एक दिन सनातन गोस्वामी को भी इच्छा हुआ कि अभी बहुत हो गया सरकारी काम, बस मैं भी भागवत पढ़ना चाहता हूँ। तो अपने तबीयत का बहाना बताकर वो निकल गए अपने घर में थे। तो नवाब हुसैन शाह को थोड़ा शंका लगा कि इनका क्या तबीयत ठीक है कि नहीं, घर में अगर 15-20 दिन आए नहीं नौकरी के लिए। तो कुछ लोगों को भेजा, वो लोग आकर बोले कि राजा ये सनातन गोस्वामी का नाम था उनके पास सकर मल्लिक है, ये सकर मल्लिक जो है इनका तबीयत सब ठीक है, घर में बैठकर भागवत पढ़ रहा है, तो तुरंत ये उधर जा पहुंचा राजा। नवाब हुसैन शाह उनके घर में जब अकस्मात अंदर घुस गया, सब ब्राह्मण लोग उठ गए, सब उठकर हाथ जोड़कर राजा को स्वागत किया। और उस समय सनातन गोस्वामी को राजा ने पूछा, नवाब हुसैन शाह ने, हे इधर घर में बैठकर तुम भागवत पढ़ रहे हो, तुम सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो मेरे साथ? तो सनातन बोले कि बहुत हो गया अभी नौकरी है, अभी हम चैतन्य महाप्रभु के मिशन में, चैतन्य महाप्रभु नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी हमको भागवत पढ़ना है, हम यह करना है, आपको जो करना है राजा आप करो, अगर मुझे जेल में डालना है तो डालो, मारना है तो मारो, भगाना तो भगाओ, जो करना करो, तुम तो राजा हो हम प्रजा हैं, ऐसे बोले सनातन गोस्वामी। इससे क्या पता चलता है, राजा को ब्राह्मण लोग भी आदर देते थे क्योंकि वो एक भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए। तो इधर परीक्षित आया है तो उसको आदर देना स्वाभाविक है ब्राह्मणों के लिए भी, ऐसे। लेकिन सिंगी जो बोल रहा है इधर कि पालतू कुत्ता दरवाजे को छोड़कर ब्राह्मण के घर के अंदर ब्राह्मण के साथ बैठकर खाने की इच्छा कैसे कर सकता है, इस तरह बोल रहा है। इसे पता चलता है कि ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये अनुभवी ब्राह्मण नहीं है, ये खुद ही अपक्व है। ऐसे एक अपक्व ब्राह्मण के जिह्वा का आश्रय लेकर कलिराज ने कुछ दुरुक्ति बोलते हैं उसको, अपशब्द निकाला उसके मुंह से, तो एक अपशब्द लगा, अपशब्द हुआ क्या है, वो श्राप। किसको किसको श्राप दिया, राजा परीक्षित को। लेकिन ये किसका काम था, कली का काम था, कली ही उनके जिह्वा में बैठ गया। देखिए हमने एक पुराण में पढ़ा ये कहानी, एक ब्राह्मण को 7.5 दिन के लिए शनि पकड़ा, एक ब्राह्मण को। तो शनि कैसे पकड़ता है, देखिए वो ब्राह्मण घर आता है, थोड़ा जैसे मूत्र का विसर्जन करने के बाद पांव को धोना चाहिए है ना, तो वो धोते समय सामने धोता है पीछे नहीं धोता है, तो ये कौवा आकर बैठता है, वो कौवा से शनि अंदर घुस जाता है इसके पीछे से, क्योंकि पांव धोया नहीं ठीक तरह से, तो अंदर घुस गया। तो अंदर शनि घुसते ही घर में जाकर बैठता है, पत्नी परोसती है प्रसाद प्लेट में, मुंह में डालता है, एक पत्र आता है, और इससे जोर से गाली देता है पत्नी को, क्योंकि जब शनि बैठ जाता है जीवा में तो शब्द भी ठीक नहीं निकलते, ऐसे अपशब्द निकालता है वो। उसके बाद वो राजा के लोग आकर उसको पकड़ कर लेके जाते हैं राजा से, राजा के पास, बोलते हैं कि ये जो पूजा करता है मंदिर में उधर भगवान के जो कंकण है वो गायब हो गया, लगता है कि इसने चोरी किया अपने बेटी की शादी के लिए, इस तरह बोलकर उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन 7 दिन के बाद सब ठीक हो जाता है उसका। बोलने का मतलब क्या है, कलयुग में अगर हम लोग अपशब्द निकलते हैं मुंह से, अपयश, इसका मतलब है कली बैठ गया हमारे जीवा में, ये समझ सकते हैं। कभी कभी हम लोग क्रोधित भी हो जाते हैं, हम लोग क्रोध के वश में भी आकर बुरे शब्द गाली नहीं देना चाहिए भक्त को। हम ये हम सीखते हैं ये श्रृंगी से। इसलिए भगवान खुद बोलते हैं, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम् तप उच्यते। पुस्तक में ये 17वां अध्याय के 16वां श्लोक है भगवद्गीता में। भगवान बताते हैं अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसे शब्द बोलो जो दूसरे लोगों को उत्तेजित नहीं करेगा, और सत्यम सत्य बात बोलो, प्रेम से बोलो, ऐसे बताते हैं भगवान। तो इधर परीक्षित जो है, परीक्षित के संबंध में जो संदेश सुना ये बच्चे ने, श्रृंगी ने, लेकिन कुछ पूछताछ नहीं किया उसने किसी से, ऐसे ही अपने जनेयों को लेकर काट कर उन्होंने श्राप दे दिया उन्होंने। ये हम एक बात समझते हैं, अगर आपको कोई आकर आपके पास बोलते हैं कुछ किसी के बारे में, तुरंत तो उसको मान नहीं लेना चाहिए, आपको थोड़ा पूछताछ करना चाहिए। जैसे एक वक्त आया किसी के पास बात करने के बाद, आकर बोला प्रभु जी वो बोलता है कि आप बेवकूफ हैं, ऐसा वो वक्त बोल रहे हैं। तो ये वक्त कुपित हो बोला, क्या बोला वो बेवकूफ बोला क्या मुझे, वो मेरे से भी बड़ा बेवकूफ है वो, ऐसे बोले उन्होंने। लेकिन इसको क्या करना चाहिए, जाकर पूछना चाहिए कि प्रभु जी आपने क्या बोला, आपने बेवकूफ बोला क्या मुझे। तो क्या बोलेंगे, प्रभु जी ऐसा नहीं बोला प्रभु जी, मैं इतना ही बोला कि प्रभु जी ने जो निर्णय लिया है इसके बारे में और थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, और भी कुछ भक्तों से कंसल्ट करना चाहिए, ऐसे बोला मैंने। तो लोग एक बात सुनकर दूसरे बात बोलते हैं दूसरों को जाकर, हम उसको सुनकर तुरंत हमें कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए। लेकिन श्रृंगी ने अपने मित्रों से सुना, दुनिया का राजा आया परीक्षित, एक मृत सर्प को डाल दिया तुम्हारे पिताजी के ऊपर, बस इतना ही बोले, ऐसा किया क्या, मैं श्राप दे देता हूँ, श्राप दे दिया उसने कुछ सुने बिना। देखिए उन्होंने ये बात नहीं सोचा कि अगर सारे दुनिया के राजा आ रहा है किसी के घर में, तो उन शास्त्र बोलते हैं कि अगर कोई आपके घर में आते हैं उनको एक आसन देना चाहिए, थोड़े पीने के लिए पानी देना चाहिए, मधुर शब्द बोलना चाहिए, खाने के लिए कुछ भोजन प्रदान करना चाहिए, उनके साथ बैठकर बात करना चाहिए, प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, शास्त्र बोलते हैं। अगर ये सब नहीं कर पाओगे तो बताता है शास्त्र कि कम से कम चटाई लगाना चाहिए, चटाई भी नहीं है तो जमीन को अपने कपड़ों को लेकर सफाई करके बोलना चाहिए, इधर बैठ जाइए करके बोलना चाहिए, और थोड़ा पानी देना चाहिए। अगर आपके पास जमीन भी नहीं देने के लिए, पानी भी नहीं देने के लिए, जोर से रोना चाहिए कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ कुछ, आप आए हैं बड़ा मेहमान हमारे घर में लेकिन मेरे पास कुछ देने के लिए भी नहीं है आपको, तो ऐसे जोर से रोना चाहिए, उससे वो तुष्ट हो जाएगा, वो बोलेगा रो मत शांत हो जाओ, मैं आज जमीन जमीन में बैठ जाऊंगा नीचे, ऐसे शास्त्र बताते हैं। ऐसे स्वागत करने का तरीका आप लोग जानते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि को देव भगवान जैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए। लेकिन इधर सामिक ऋषि ऐसे ही बैठे थे, उन्होंने स्वागत भी नहीं किया, आंख खोल कर देखा भी नहीं, नकार दे, इसके बारे में श्रृंगी ने सोचा ही नहीं उनके बारे में, लेकिन सिर्फ उन्होंने देखी बात, देखा कि राजा ने ऐसा किया करके साफ दिया उसने, सोचे बिना। इस तरह दो चीज अभी तक हमने सीखा है, एक अपशब्द मत बोलो, दूसरा है सोच विचार किए बिना, दूसरों से पूछताछ किए बिना अचानक कुछ निर्णय मत लो, है ना, ये दो चीज सिखा दिया श्रृंगी ने हमको। आगे बताता है 35 श्लोक में, कृष्णे गते भगवती शास्त्री उत्पथ गामिनाम तद्भिन्न सेतून अद्याहम शास्मी पश्यत मे बलम। बोले
सबो के परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं, अतएव इस मामले को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा, अब मेरे पराक्रम को देखो।
हाँ देखिए, इससे पता चलता है कि ये अपने पराक्रमता दिखाना चाहता है। हाँ देखिए, दंड देने के लिए भी पहले हमारे हृदय में अनुकंपा होना चाहिए, जिस व्यक्ति के पास अनुकंपा नहीं है वो दंड देने के लिए योग्य नहीं है। हाँ जैसे माता पिता को बच्चे के ऊपर अनुकंपा है इसलिए वो दंड देने के लिए सक्षम है। अगर इस तरह अपने बल का प्रदर्शन करना चाहता है कोई व्यक्ति दुनिया के लोगों को ताकि वो लोग ताली बजाएंगे, ऐसे व्यक्ति दंड देने के लिए अयोग्य है। तो बड़ी तात्पर्य, बड़ी बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है।
वह अनुभवित ब्राह्मण अल्प ब्रह्म तेज से गर्वित होकर कलयुग के जादू से प्रभावित हो उठा। महाराज परीक्षित ने कलयुग को चार स्थानों में रहने की छूट दे दी थी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, किंतु राजा के अत्यंत दक्ष शासन में कलि को इन नियत स्थानों में कहीं भी रहने को स्थान न मिल पाया। अतएव कलयुग अपनी सत्ता जताने की ताक में था और भगवान की कृपा से उसे इस गर्वित अनुभवहीन ब्राह्मण बालक रूप में छिद्र मिल ही गया। यह छोटा सा ब्राह्मण विनाश के लिए अपना तेज दिखाना चाह रहा था और उसने महाराज परीक्षित जैसे महान राजा को दंड देने की दुष्टता की। वह भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद उनका स्थान ग्रहण करना चाह रहा था। ये उन उपद्रवियों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है जो कली के प्रभाव से श्री कृष्ण का स्थान लेना चाहते है। थोड़ी सी शक्ति से संपन्न होकर एक उपद्रवी भगवान का अवतार बनना चाहता है। इस संसार से भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद कई मिथ्या अवतार हुए हैं और वे भोली भाली जनता की आध्यात्मिक आज्ञाकारिता का स्वीकार करके अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कली को इस ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी के माध्यम से अपना शासन जताने का अवसर प्राप्त हो सका।
करेक्ट। आप लोग समझ गए ना, श्रृंगी के बारे में बोल रहे प्रभा जी, वो अनुभवी नहीं था, साथ साथ गर्वी था। इस तरह वो देखिए, इधर कृष्ण का भी नाम ले रहा है, बोल रहा है कि कृष्ण की अनुपस्थिति में कोई भी कुछ भी कर सकता है क्या, क्षत्रिय लोग, इसलिए मैं अपने ब्रह्म तेज को इस्तेमाल करके इसको श्राप दूंगा, ऐसे बोल रहा है। तो कभी कभी लोग इससे भी बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं अच्छाई के लिए मैं कर रहा हूँ ये, ऐसे अच्छाई के नाम में बुराई करना। ये बोल रहा है कि राजा को मारने से मैं सब क्षत्रियों को दंड दे दूंगा क्योंकि वो लोग ब्राह्मणों का मिसट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में अगर झगड़ा होता है तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है वो। क्योंकि देखिए, आप लोग जानते हैं विश्वामित्र और वशिष्ठ के बारे में, विश्वामित्र वो क्षत्रिय राजा था वो, और वशिष्ठ थे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण होकर वो यज्ञ करते थे, एक दिन शांति से यज्ञ कर रहे थे तो विश्वामित्र जा पहुंचा उनके यहाँ, क्योंकि उस समय अकाल था बहुत, कुछ नहीं खाने के लिए पदार्थ था उनके देश में। तो राजा आया है करके वशिष्ठ ने कामधेनु के पास जाकर, सबला नाम का एक गाय था उनके पास, उनसे लेके आकर एक पूरा प्लेट उनका परोसा। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इतने अकाल के समय में आपके आश्रम में इतना बढ़िया प्रसाद होता है, इतना टेस्टी प्रसाद होता है, बढ़िया इतने विविध व्यंजन हो रहा है, ये कैसे मिला आपको? तो उन्होंने बोला कि कामधेनु ने दिया ऐसे। तो जाकर देखा, ओ इधर है कि कामधेनु, तो उसको ईर्ष्या हो गया उसको। तो वो बोला कि मेरे सब प्रजा को भोजन परोसने के लिए कामधेनु को लेके जाऊंगा, सबको दिला दूंगा भोजन इससे। वो बोले नहीं, देखो राजन, तुम जाकर यज्ञ करो, यज्ञ करके बारिश आएगा और सब समृद्धि प्राप्त होगा लोगों को। लेकिन कामधेनु हमारे ब्राह्मण की सेवा के लिए, काम के लिए रखा गया है, लेकिन माना नहीं, बलात्कार करके उसको लेके जाना चाहा हुआ, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय के बीच में झगड़ा हुआ उस समय। आप देखते हैं, उसके बाद वो देखा कि विश्वामित्र विविध तरह के तपस्याएं करके, विविध आयुधों को अर्जित करके झगड़ा करने के लिए प्रयत्न किया वशिष्ठ से, लेकिन वशिष्ठ ने अपने हाथ में जो रखता है ना ब्राह्मण लघु, उससे पूरा निगल लिया सब आयुधों को, कुछ नहीं कर पाया। इसलिए वो भी क्षत्रिय राजा कौशिक था वो पहले, उसके बाद विश्वामित्र बनकर वो भी तपस्वी बनकर ब्रह्म पदवी को प्राप्त किया उसने, ब्रह्म ऋषि नाम के। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, शास्त्र में पढ़ते हैं कभी कभी इस तरह ब्राह्मण लोगों को रक्षा देना चाहिए क्षत्रिय लोग, और क्षत्रिय लोगों को उपदेश देना चाहिए ब्राह्मण लोग, ये शास्त्र बताते हैं। लेकिन अगर ये नहीं होगा, ये ब्राह्मण के विरुद्ध क्षत्रिय लोग इस तरह अपने, क्षत्रियों के पास शरीर का बल है, ब्राह्मण के पास बुद्धि का बल है, तो इसलिए अगर बुद्धि का बल शरीर का बल दोनों जुड़ जाएगा तो सारे दुनिया के लिए कल्याण हो सकता है। इस तरह इधर हम देखते हैं कि वो श्रृंगी अपक्व बालक था, गर्वी बालक था, तो उसके सहारा लेकर कलिराज उनके जिह्वा में घुस गया और घुसकर इस तरह के अपशब्द के द्वारा परीक्षित को श्राप देकर क्योंकि कलिराज का योजना था कि यह राज्य जो है परीक्षित उसको निकालना चाहिए पहले, जब तक यह रहेगा लोग चार नियम पालन करेंगे और हमारा जमाना कैसे चलेगा हमारा, हम जी नहीं पाएंगे, हमको अपने सीमा के बाहर रखा है ये, अंदर ही घुस नहीं पा रहे हैं इस दुनिया में हम, इस तरह कल ही सोच रहा था। इसलिए ये अपक्व ब्राह्मण का आश्रय लिया, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं इधर। इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान् ऋषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाक्वज्रं विससर्जः। देखिए इति उक्त्वा, इस तरह बोलकर रोषताम्र अक्षो ना, कोप से लाल लाल आग बबूला हो गया था वो श्रृंगी, ऐसे ताम्र अक्षों के साथ वयस्यान ऋषि बालक है, उनके वयस के बाकी बालकों के समक्ष खड़े होकर कौशिक्याप उपस्पृश्य, ये बता रहे हैं कि इधर कौशिकी नाम का जो नदी बह रहा था उधर उसके पानी को उसका स्पर्श करके वाक वज्रम, अपने जिह्वा से एक वज्र को छोड़ा उसने श्राप के रूप में, ऐसे बताया गया। इति लंगित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनी दंक्ष्यति स्म कुलांगारम चोदितो मे तत्द्रुहम। ये बताते हैं इसे लंगित मर्यादम तक्षक सप्तमे अहनी, वो बोल रहा है कि अभी से लेकर सप्तमी का दिन, सात दिन अभी से, सातवां दिन तक्षक नाम का एक एक सर्प ये मेरे राजा मेरे पिताजी को जिसने अपमान किया उस राजा परीक्षित उसको ये डसेगा, इस तरह वो श्राप देता है। हाँ पढ़िए, तात्पर्य बहुत ही मर्म, तात्पर्य पढ़िए।
इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ हो गया और धीरे धीरे कलयुग में सारे ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज तथा संस्कृति दोनों से विहीन हो गए। ब्राह्मण बालक ने महाराज परीक्षित को कुलांकर अर्थात वंश का निकृष्ट व्यक्ति समझा, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण बालक ही स्वयं ऐसा था, क्योंकि उसी के कारण ब्राह्मण जाति उसी तरह तेज रहित हो गई।
देखिए बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, ब्राह्मण जाति तेज रहित हो गई, तो आजकल के जमाने में हम देखते हैं उन दिनों में ब्राह्मण लोग गुरुकुल में जाकर गुरु के आश्रम में रहकर अच्छे तरह पढ़कर अच्छे दिव्य गुणों को हासिल करके वो सारे दुनिया को भलाई करते थे। देखिए ब्राह्मण के अलग अलग नाम सुनते हैं हम शास्त्र में, जैसे पुरोहित, पुर का मतलब है गृहस्थ का घर, हित का मतलब है उनको हित करने वाला, घर में जाकर कुछ पूजा पाठ करके उनको हित प्रदान करने वाला, स्वस्ति वचन करके वो पुरोहित बोलते हैं। इस तरह एक श्लोक आता है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेद् द्विज, वेद पाठात् भवेद् विप्रः, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जन्म से सब लोग शूद्र हैं, ऐसे बताया गया है। और जन्मना जायते शूद्र, संस्कार करने से 40 संस्कार हैं उनमें से 10 खास संस्कार हैं, वो करने से संस्कारात् भवेद् द्विज, एक द्विज बनता है, ब्राह्मण बनता है। और वेद पाठात भवेद विप्र, जो वेदों को अच्छी तरह अध्ययन करते हैं उनको विप्र बोलते हैं। और जो ब्रह्म परब्रह्म भगवान जिनको वो जो जानता है उनको, उनका नाम है ब्राह्मण, ऐसे बोलते हैं। लेकिन आजकल देखा जाता है कि बच्चे पूजा पाठ करते हैं, पूजा इत्यादि वगैरह भी करते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं, लेकिन भौतिक चेतना बहुत बढ़ गया है। आजकल ब्राह्मण भी अपने बच्चों को अमेरिका भेजना चाहता है, बोलता है कि मेरा बेटा लंदन में है, अमेरिका में है, जर्मनी में है, और बहुत गर्व से बोलते हैं वो लोग, हैं वेद पाठ नहीं करते हैं। और एक था ऐसे एक ब्राह्मण दक्षिण भारत में, उसके 4 बेटे थे, किसने पूछा तुम्हारा पहला बेटा क्या कर रहा है, वो बोला वो तो लंदन में है, दूसरा बेटा क्या कर रहा है, वो तो जर्मनी में है, तीसरा बेटा क्या कर रहा है, वो अमेरिका में है, बोला चौथा बेटा क्या कर रहा है, रोने लगा वो, तो क्या हो गया, वो इस्कॉन में जान कर लिया वो। लेकिन मालूम नहीं है इस्कॉन में ज्वाइन करके कितने अच्छा काम कर रहा है वो, लेकिन वो सोच रहा है कि ये हमको डॉलर नोट नहीं ला रहा है ये। तो ऐसे ब्राह्मण लोगों का हाल बुरा हाल हो गया आजकल के ज़माने में है उनके पास। जैसे मैं IIT में पढ़ रहा था, एक मेरे पड़ोस मेरे निकट जो बैठा था वो पूछा मुझे, आप ब्राह्मण हो क्या तुम? ऐसे पूछकर बोला कि मैं ब्राह्मण हूं करके अपने जनेई को निकाल कर दिखाया। बोला तो एक हाथ में जनेई हो दूसरे हाथ में अंडा पकड़ा हो। तो मैंने बोला अरे किस तरह का ब्राह्मण हो तुम, तुम अंडा खाते हो, तुम ब्राह्मण बोलते हो अपने आप को। तो इसलिए हम लोग देखना चाहिए कि ब्राह्मण जो अपने आप को घोषित करता है उसके अंदर ब्राह्मण का गुण होना चाहिए। जैसे शम दम तप शौचम शांति राजवमेव च ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम बोलते हैं भगवान कृष्ण। क्षमा का मतलब है मन का संयम होना चाहिए, इंद्रियों का संयम होना चाहिए, तपस्या करना चाहिए ब्राह्मण को। और शौच, शौच मतलब शुद्ध होना चाहिए। शांति ही का मतलब है टॉलरेंस होना चाहिए। आर्जवों का मतलब है सरलता और नेकता होना चाहिए। और ज्ञानम विज्ञानम उनको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए अपने जीवन में। तो ये सब करने वाला ब्राह्मण होता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये बोल रहा है कि कुलांगार नाम से पुकार रहा है श्रृंगी परिषद राजा को, लेकिन खुद ही वो उनके ब्राह्मण के कुल को दूषित कर रहा है, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो आगे के 28वां श्लोक में 38वां श्लोक में बताया गया है कि जब वो ब्राह्मण अपने घर लौट आया तो उसने देखा कि उनके पिताश्री के गर्दन पर एक मृत सर्प था और जोर से वो रोने लगा। देखिए क्यों रोया, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ये ब्राह्मण को लगा कि मैंने कुछ गलती कर दिया है श्राप देकर। देखिए एक छोटे अपराध के लिए छोटा दंड होना चाहिए, बड़े अपराध के लिए बड़ा दंड होना चाहिए। अगर आप किसी कमरे में देखते हो कि एक कॉकरोच उड़ रहा है, कभी उड़ता है ना कॉकरोच, ऐसे कॉकरोच उड़ रहा है तुरंत आप मशीन गन लेके आकर ऐसे आप शूटिंग करोगे आप, तो चार लोग गिर पड़े मर गए, तो सब लोग भागते हुए आते हैं, क्या हो गया आपने राइफल लेकर ऐसे गोली मारा क्या हुआ? हाँ बोलते हैं कि एक कॉकरोच आ गया था, नहीं तो एक मच्छर आ गया था। तो लोग पूछेंगे मच्छर के लिए आपने ये शूटिंग किया? शूटिंग किया क्या करे, चार लोग मर गए हैं। आप ऐसे बोलेंगे कितना मूर्खता है वो, छोटे मच्छर को पकड़ने के लिए क्या आपको मशीन गन की जरूरत है क्या? इस तरह परीक्षित के छोटे अपराध के लिए उन्होंने बड़ा दंड दे दिया। ऐसे भागवत में दूसरे स्थान में पढ़ते हैं, जैसे दुर्वासा मुनि ने देखा कि मैं आया हूँ मेहमान अम्बरीश महाराज के महल में, तो अम्बरीश ने बोला उनको आप जाकर नहा धोकर आ जाइए, उसके बाद हम आपको प्रसाद परोसेंगे। तो नहाने के लिए गए थे वो नदी में, लेकिन इतने में पारायण ये टाइम होता है पारायण टाइम होता है ना, जैसे कल एकादशी था आज हमारा पारायण टाइम है, तो पारायण टाइम पूरे होने के पहले उनको कुछ खाना था, लेकिन कुछ धान्य नहीं खाया उन्होंने। ब्राह्मणों से उपदेश लेकर उन्होंने सिर्फ चरणामृत को पिया। चरणामृत को पीना वो खाने का भी समान है ना खाने का भी समान है, वो ऐसा बताया गया पुराणों में। लेकिन इसको अपने ज्ञान चक्षु से देख लिया कौन? दुर्वासा मुनि। तो एकदम क्रोधालु होकर वापस लौट आया, हे अम्बरीश तुम बड़े दुष्ट हो, तुम विष्णु का भक्त नहीं हो, क्योंकि तुमने मेहमान को भोजन दिए बिना खुद ही तुमने कुछ आहार स्वीकार लिया, क्योंकि इस तरह से तुम सब दुनिया के जीवों के विरुद्ध हो, तुम वैरी हो, इस तरह की अलग अलग बातें बोलने लगा। देखिए ये दुर्वासा की ये सब बातें मानने लायक नहीं है, क्योंकि वो अम्बरीश के अंदर इस तरह का कुछ भी गलत नहीं था वो, तो अम्बरीश इनके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोला वो, ऐसे हाथ जोड़कर खड़ा रहा वो। तो इस तरह बोलकर दुर्वासा मुनि ने एक बाल निकालकर नीचे डालकर उसे एक बड़ा राक्षस को निर्माण किया उन्होंने। वो राक्षस अम्बरीश को पकड़कर निगलने वाला था वो, ऐसे उसका शरीर भी आग जैसा था उसका। लेकिन इतने में भगवान विष्णु ने देखा कि अम्बरीश के लिए खतरा है, उन्होंने सुदर्शन चक्र भेज दिया है? तो सुदर्शन चक्र आकर काट दिया, किसको? असुर को काट दिया और पीछे करने लगा दुर्वास के, क्योंकि दुर्वास ने अम्बरीश के एक छोटे गलती के लिए बहुत बड़ा दंड दिया उन्होंने। तो हम लोगों को भी ये देखना आवश्यक है अपने जीवन में, अगर हम किसी से कुपित हो गए हैं, देखिए कभी कभी छोटे चीज के लिए भी हम ज्यादा कुपित हो जाते हैं, तो हम किसके वर्ग में आते हैं? दुर्वासा मुनि के वर्ग में, नहीं तो श्रृंगी के वर्ग में आते हैं, है ना। क्रोधित हो जाना सबके लिए स्वाभाविक है, लेकिन छोटे चीज के लिए बड़ा क्रोध दिखाने की जरूरत नहीं है और अच्छा नहीं है, और हमारे लिए वो बहुत बड़ा दुश्मन बनेगा वो ऐसे क्रोध। तो इस तरह से श्रृंगी का क्रोध जो था, इधर बताया जा रहा है कि जब देखिए कभी कभी हम लोग क्रोध के वश में आकर कुछ बोल देते हैं, कर देते हैं, बाद में रोते हैं, अरे ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं बोलना था, ऐसे बाद में पछताते हैं। तो इसलिए इंसान को ये सोचने लायक चीज़ है। हमने एक कहानी सुना, एक व्यक्ति अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर जंगल गया, कुछ खाने की वगैरह चीज़ लेकर गया, तो उनके साथ उनका कुत्ता भी भाग रहा था साथ साथ। तो जंगल जाने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गया, कुछ समय के लिए पढ़ाई किया, कुछ समय बाद कुछ खाया पिया, उसके बाद उठ गया और घोड़े के ऊपर बैठकर वापस लौटा रहा था। लेकिन कुत्ता जो है उनको जाने नहीं दे रहा था, वो ऐसे मार्ग में आकर भाव 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 करते करते ऐसे कर रहा था। तो इंसान देख रहा था कि ये क्यों कुत्ता ऐसे चला रहा है, लगता है कि पागल हो गया वो। तो अपने हाथ में पिस्तौल को लेकर शूटिंग कर दिया कुत्ते को, शूटिंग करके निकल गया उधर से। तो 2-4 किलोमीटर जाने के बाद पता चला उसको हमारे पर्स नहीं है, हमारे पास पर्स किधर गया, ढूंढा इधर उधर मिला नहीं। तो यू टर्न लेकर वापस लौट गया जंगल में, जाकर देखा वो पेड़ के नीचे पर्स पड़ा था, वो पर्स के ऊपर कुत्ता पड़ा था, ऐसे ऐसे पड़ा था कुत्ता, उसके मुंह से खून निकल रहा था वो। तो तुरंत वो पर्स को लेकर देखा, बहुत पैसा था उसके अंदर, तो ले लिया। तो लेकिन देखा कि कुत्ता मर गया था, तो जोर से रोने लगा वो, कितना बड़ा गलती कर दिया मैंने, कुत्ते को शूटिंग कर दिया। अब कुत्ता क्यों भौंक रहा था मालूम है आपको? क्यों भौंक रहा है? हाँ, पर्स छोड़ जा करके वो भौंक रहा था, उसके ही पर्स देने के लिए वो भौंक रहा था, लेकिन जो उसकी सुरक्षा प्रदान कर रहा है उसको शूटिंग कर दिया इसने। ऐसे ही श्रृंगी ने कर दिया। श्रृंगी जो राजा सारे दुनिया के लोगों को खली के प्रभाव से बचा रहा था राजा, उसको इसने श्राप दे दिया। इसके कारण इसके मन ही मन इसको थोड़ा शोक उत्पन्न हुआ, तो उनको लगा कि मैंने ज्यादा ही क्रोध दिखा दिया है, श्राप देने की जरूरत नहीं थी। देखिए शास्त्र में इस तरह के उदाहरण अनेक आते हैं, आप लोग जानते हैं। एक ब्राह्मण था जमदग्नि नाम के, वो उसके धर्मपत्नी थी रेणुका। जब जमदग्नि यज्ञ कर रहा था उस समय आ पहुंचा कार्तवीर्याजुन। कार्तवीर्याजुन का हजारों हाथ थे, वो बहुत बड़े असुर था। वो आया था और उन्होंने देखा कामधेनु गाय इनके पास था, तो बलात्कार करके उसको खींच कर लेके गया वो। तो बहुत कुपित हो गए जमदग्नि जी, इस तरह क्या करके। तो उस समय उन्होंने इनको बोला, अपने बेटा परशुराम को बोला, देखो परशुराम ये बलात्कार करके लेके गया है गाय को, वापस लौट लेके आओ। तो परशुराम गया, परशुराम जाकर इसके सब हाथ काटा। हाथ काटना नो प्रॉब्लम, दो हाथ रखना चाहिए कम से कम, वो खाने पीने के लिए तो काम आएगा वो दो हाथ, बाकी हाथ काट सकता था वो। लेकिन हाथों को भी काट दिया, लेकिन मार ही डाला उसको, किसको? कार्तवीर्याजुन को। तो वह मार कर जब वापस लौट लाया गाय को, तो जमदग्नि को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला, जमदग्नि ने बोला कि देखो बेटा, उनको पराजित करके तुमको लाना था गाय वापस, लेकिन उनको मारना अच्छा नहीं है, तुमने मार क्यों डाला, या अच्छा नहीं है, ऐसे बोले वो। इतने में क्या हुआ, परशुराम बाहर गया था, वे रेणुका थी उधर कुटिया में, जमदग्नि बैठ कर यज्ञ कर रहे थे। तो कार्तवीर्याजुन के बेटे आ गए, वो आकर देखा कि अरे यही ब्राह्मण का बेटा है, हमारे पिताजी को उड़ा दिया, इसको हम छोड़ेंगे नहीं करके उनके गर्दन को काट दिया, किसके? जमदग्नि के, काट कर उनको मार दिया। तो इतने में रेणुका ने देखा कि अपने पति को मार रहे हैं कोई, वो अपने छाती में मारती हुई पीटती हुई 21 बार उन्हें रोया, हे रामा 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 रामा, ऐसे रामा रामा करके परशुराम को पुकारा उन्होंने 21 बार। तो परशुराम भागते हुए आया, देखा कि पिताजी मर गए, तो तभी उन्होंने वो पुत्रों को भी मार दिया उनको भी। तो परशुराम बहुत शक्तिशाली थे, उसके बाद 21 पीढ़ी क्षत्रियों को मारा उन्होंने, हाँ परशुराम जी आप जानते हैं। बोलने का मतलब क्या है, ये लीला बहुत खतरनाक लीला है, आप पढ़ेंगे, इसने इनको मारा, उसने इसको मारा, इसको मारा। लेकिन देखिए इस तरह का समस्या होता है, हम ज्यादा क्रोध दिखाने के कारण एक छोटे चीज के लिए बड़ा क्रोध तांडव करना ये अच्छा नहीं है, ये हम समझते हैं। तो हम हमारे घरेलू चीजों में भी कभी कभी छोटे चीज के लिए अगर हम देखिए अगर इस चीज के लिए हम इतना क्रोध दिखाते हैं, अगर मामला ही इतना बड़ा है तो क्रोध कैसे दिखाएं, मर ही जाएंगे हम, है ना। इसलिए श्रृंगी ने ये छोटे मामले को लेकर बड़ा क्रोध दिखा दिया, ये हम समझते हैं इधर। इसलिए बाद में फूट फूट कर रो रहा है वो, अभी गलत काम कर दिया, अभी उसको कुछ बदला नहीं सकता है, लेकिन अभी रो रहा है पिताजी के पास आकर गलत करने के बाद। तो ब्राह्मण ऋषि जो थे वो उनको बुलाकर बेटे को अपने गोद में बिठा लिया, पूछा कि तो इस तरह आप अपने पिताजी के पास आकर रो रहा है। तो उनके पिताजी जो तपस्या में बैठे थे उन्होंने आंख खोला, ये 29वां श्लोक में पढ़ते हैं, और आंख खोल कर देखते हैं कि एक मृत सर्प था उनके गले में, उसका ऐसे लेकर फेंक दिया, कुछ भी परवाह नहीं किया उन्होंने, क्योंकि ये ऋषि भी साधारण ऋषि नहीं थे, जो समीक ऋषि थे, कुछ परवाह नहीं किया। देखिए हम लोग अपने जीवन में अगर कोई निंदा करते हैं हमको, तो निंदा को बहुत बढ़ा चढ़ा कर हम कुछ प्रतिरोध लेना चाहते हैं, लेकिन ऋषि भी पहुंचा हुआ आत्मा था, ध्यान में बैठा था, तो उनको राजा परीक्षित के ऊपर बहुत प्रेम था कि भगवान का शुद्ध भक्त है, महान पुरुष है, ये पांडवों का वंशज है, ये सब जानता था वो, तो ये सब जानने के कारण अगर राजा नहीं डाला मेरे गर्दन के ऊपर इस तरह का सर्प, इसमें समस्या क्या है, मैं भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया, उनको पानी देना था, कुछ करना था, मैंने किया नहीं, इस तरह सोचकर उन्होंने बुरा नहीं माना, उन्होंने तुरंत उसको निकाल कर फेंक दिया उन्होंने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 41वां श्लोक में, निशम्य शब्दम अतदर्हम नरेन्द्रम सब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत् अहो बताम हो महदर्यते कृतम अल्पीयसी द्रोह उरुर्दमोद्रतः। ये 41वां श्लोक है, बताते हैं पिताजी ने अपने बेटे से सुना कि राजा को श्राप दिया है बेटे ने, उसको सुनकर बहुत पश्चाताप किया उन्होंने, हाय हाय बेटे तुमने क्या कर दिया, तुमने इतना बड़ा गलती कर दिया बेटे, इस तरह करके उन्होंने डांटा। पिताजी बच्चे को बोलते हैं कि बच्चे को सोचे बिना कुछ तुमने ऐसा कर दिया करके, वो बहुत पश्चाताप करते हैं पिताजी। न वैर्बेर नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयः प्रजाः। 42वां श्लोक पढ़िए अनुवाद 42। देखिए इन श्लोकों में इतना ही, मैं पिछले सत्र में थोड़ा बहुत बोला था मैंने इसके बारे में, कि वो बताते हैं कि हे बेटे जो राजा होता है सारे दुनिया का, उसको साक्षात भगवान के समान बराबर उनको आदर देना चाहिए, क्योंकि सारे जनता को पालन पोषण करना बच्चे जैसे, सब जनता को सुरक्षा प्रदान करना, यह राजा का काम होता है। देखिए जनता इंद्रदत्त चाहता है, लेकिन राजा ब्राह्मणों को सेवा में लगाकर भगवत कथा भगवत कैंकर्य इत्यादि में लोगों को लगाता है, इसलिए राजा जो है वो भगवान का ही कार्य करने वाला होता है राजा। ऐसे जो राजा है उसको साधारण मनुष्य के साथ तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समाज का शुभ चिंतक है। वो बताते हैं, आगे बताते हैं कि अगर तुम राजा को श्राप दे दिया, राजा मर गया है, तो समाज के सब लोग चोर जैसे चोर बन जाएंगे, और समाज में चोर बढ़ जाएंगे, बोलते हैं समाज में चोर बढ़ जाएंगे, इसके कारण जनता जो है वो जैसे कभी कभी एक भेड़िया जाना है, भेड़िया आ जाता है बकरों के झुंड में आकर उन खा लेता है उनको, इस तरह चोर लोग आकर अत्याचार करेंगे जनता के ऊपर, ऐसे बताते हैं। इतना ही नहीं, वो बताते हैं कि जनता भी धर्म संस्कृति इत्यादि को त्याग कर वो जानवर जैसे बन जाएगा, क्योंकि राजा नहीं है उनको देख रेख करने के लिए, इस तरह वो बोलते हैं। तो सब लोग पैसा कमाने में, इंद्रित्व करने में अपने समय गंवा देंगे, कोई उनको पूछने वाले नहीं होंगे, सब जनता कुत्ते और बंदर जैसे बन जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। तुमने बहुत बड़ा गलती किया। तो 46वां श्लोक में बताते हैं, धर्म पालो नरपति सतु सम्राट बृहश्रवाः साक्षान महाभागवतो राजर्षेर्हयमेधयाट् क्षुत्रश्रम युतो दीनो नैवास्मत् क्षापमर्हति। वो बोल रहे हैं कि अरे मूर्ख बच्चे, तुमको मालूम नहीं वो राजा धर्मपाल है, वो नरपति है, वो सम्राट है, और वो बोलते कि बृहश्रभ का मतलब है वो बहुत लोग उनको बहुत बड़ा मानते हैं, यशस्वी है वो, और महाभागवत भक्त है, राज ऋषि है, बहुत बहुत कुछ उन्होंने राजस्व यज्ञ किया है। इस तरह वो एक प्यास अवस्था में, भूखे अवस्था में जब इस तरह का कुछ उन्होंने किया है, मेरे ऊपर कुछ मृत सब को डाला है, उस छोटे चीज के लिए तुमने बहुत बड़ा शाप दे दिया है। ये बोलते हैं कि न शापम अर्हति, वो शाप स्वीकारने के लिए वो योग्य नहीं है, उसको तुमने शाप दे दिया बेटा, इस तरह वो डांटते हैं अपने बच्चे को। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेन अपक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुम् अर्हति। बताते हैं तो भगवान को प्रार्थना करते हैं समीक ऋषि, हे भगवान, मेरा छोटा बच्चा अपक्व है, बुद्धिहीन है, उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, और ऐसे एक निष्पाप निष्कलंक व्यक्ति जो है राजा परीक्षित, तो उसको उन्होंने दंड दे दिया है, इस तरह का शाप दिया है, आप इस बच्चे को माफ कर दो करके वो भगवान को प्रार्थना करते हैं समीक ऋषि ऐसे। तब इधर एक चीज प्रभुपाद जी बताते हैं महत्वपूर्ण चीज इस श्लोक में के तात्पर्य में। There are occasions when a brahmana may furiously curse a subordinate kshatriya or vaishya, but in the case of Maharaj Parikshit there were no grounds as already explained. देखिए आप लोग जानते हैं वेण वेण नाम के एक राजा था, बहुत पापी राजा था वो, ब्राह्मणों को यज्ञ इत्यादि वगैरह करने नहीं दिया। वो बोला ब्राह्मणों को किसी देवता की पूजा मत करो, क्योंकि सब देवता राजा के शरीर में रहते हैं, तो मैं ही परम भगवान हूँ, मेरा ही पूजा करो, बोला ऐसे। ऐसे मूर्ख राजा था वो। तो ब्राह्मण लोग उसको जाकर मिलने के लिए गए, बोले कि हे वेण राजा, देखो जब राजा यज्ञ करता है उसको भी स्वर्ग प्राप्त होता है, और सब प्रजा को भी स्वर्ग प्राप्त होता है, और इस दुनिया में भी बारिश होता है, और इंसान बहुत खुशी से जी पाएगा वो, लेकिन अगर तुम इस तरह यज्ञ इत्यादि को रोकते हो तुम भी खुद नरक में जाओगे और सब प्रजा को नरक में लेके जाओगे तुम। तो ब्राह्मण लोग बहुत प्रेम से अपने कोप को दमन करके उनको समझाया, लेकिन सुनने वाला नहीं था। ये बोला कि हे ब्राह्मणों, अगर मुझे छोड़कर किसी और की पूजा करोगे, देवी देवता की पूजा करोगे, मैं तुमको मानूंगा कि तुम जो नारी वेश्या होती है, जो पतिव्रता नहीं होती है, उसके समान में तुमको मानूंगा, ऐसे बोला ब्राह्मणों को। ये सोचा कि अगर कोई ब्राह्मण विष्णु का भी पूजा करे, ये उनको वेश्या मानता था, कौन ये वेण राजा। तो तब ब्राह्मण लोग इतने क्रोधित होकर हूं करके बोले वो लोग, उस हुंकार में मर गया वो तुरंत, उसमें ही मर गया वो वेण राजा। उसके बाद प्रथम महाराज का अवतरण हुआ। मैं क्यों बोला आपको, कभी कभी ब्राह्मण लोग इस तरह क्रोध से हुंकार करने से किसी कोई व्यक्ति मर जाता है, ऐसे सुना है हमने। लेकिन क्षत्रिय में परीक्षित श्रेष्ठ था वो, इस तरह वो बताते हैं उनके पिताजी उनको। तो इधर प्रभुपाद जी बताते हैं कि वराह पुराण में एक ऐसे कथन है कि कलयुग में ब्राह्मणों के परिवार में अनेक असुर लोग ब्राह्मण के रूप में जन्म लेंगे, ऐसा एक प्रभुपाद जी तात्व बताते हैं। इधर आगे क्या, उधर आप पढ़िए वराह पुराण से है 47 श्लोक जो है ना, 47 श्लोक के तात्पर्य में 10 लाइंस फ्रॉम बॉटम, लास्ट से 10-12 लाइन ऊपर, वराह पुराण 47 श्लोक लास्ट तात्पर्य जो है ना, नीचे से 10 लाइन लास्ट पर्पस।
इसके अनुसार जो असुर भगवान के शत्रु थे किंतु जो भगवान द्वारा मारे नहीं गए थे, उन्हें कलयुग का लाभ उठाने के लिए ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने की अनुमति दी गई।
देखिए इधर बता रहे हैं कि कुछ असुर थे जो भगवान से अभी तक मारे नहीं गए, भगवान ने सोचा कि ठीक है ये लोग तो बच गए, इनको और एक मौका दिया जाए ताकि ये लोग मेरे पास आने के लिए एक प्रयत्न कर सके। इस तरह सोचकर भगवान ने उन असुरों को ब्राह्मण के परिवार में भेज दिया कलयुग में, ऐसे वराह पुराण में बताया गया है। हाँ आगे बढ़िए।
परम दयालु भगवान ने उन जीव सबों को पवित्र ब्राह्मणों के परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जिससे वे मोक्ष लाभ कर सके, लेकिन असुरों ने इस अवसर का लाभ न उठाकर ब्राह्मण होने के गर्व से फूलकर ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग किया। इसका ज्वलंत उदाहरण शमिक ऋषि का पुत्र है। इसके द्वारा ब्राह्मणों के सारे मूर्ख पुत्रों का आगाह किया जाता है कि वे श्रृंगी की तरह मूर्ख न बने और उन आसुरी गुणों से सदैव बचते रहे जो उनमें पूर्व जन्म में विद्यमान थे। निसंदेह भगवान ने इस मूर्ख बालक को क्षमा कर दिया, लेकिन अन्य लोग जिनके पिता शमिक ऋषि जैसे नहीं है वे महान कष्ट में पड़ते रहेंगे यदि वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से प्राप्त होने वाले लाभों का दुरुपयोग करते हैं।
देखिए ब्राह्मण और वैष्णव में फर्क क्या है। ब्राह्मण लोग विविध देवताओं की पूजा करते हैं, कभी कभी निराकार ब्रह्म की उपासक भी होते हैं कुछ ब्राह्मण लोग, लेकिन वैष्णव लोग जो होते हैं सिर्फ विष्णु, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, इनका ही पूजा करते हैं, ये वैष्णव हैं। और दूसरा फर्क क्या है ब्राह्मण वैष्णव में, ब्राह्मण लोग कभी कभी चारों वेदों को याद कर लेते हैं, रीति रिवाजों को अच्छी तरह जानते हैं, वेद पाठ करते हैं, लेकिन उनको वेदों का सार जो है कृष्ण भक्ति, भगवत भक्ति, वो मालूम नहीं है अनेक ब्राह्मणों को। और फर्क भी बताया गया है कि ब्राह्मण लोग जो हैं वो लोग कभी कभी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लेटर ऑफ द लॉ स्पिरिट ऑफ द लॉ बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, रीति रिवाजों में निपुणता, दूसरा है सार में निपुणता। जैसे आप लोग जानते हैं यज्ञिक ब्राह्मण लोग घर में बैठकर ये कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, उस समय भगवान कृष्ण और बलराम एक बगीचे में आ पहुंचे थे अपने सखाओं के साथ। तो सखाओं ने बोला कि हमको बहुत भूख लग रहा है, बोले उन्होंने, तो भगवान ने उनको भेजा ब्राह्मण के पास। तो वो जो यज्ञ के बीच में एक अवकाश, एक समय होता है, उस समय में दान देने योग्य समय होता है वो। तो वो गोप बालक आ पहुंचे ब्राह्मण के पास, बोले कि देखिए ब्राह्मणों अभी जो इंटरवल पीरियड है इसमें आप लोग दान दे सकते हो। तो कृष्ण बलराम आए हैं, हम सब लोग भूखे हैं, थोड़ा प्रसाद दीजिए। तो ब्राह्मण लोगों ने मुड़कर देखा गोप बालक आए हैं, लेकिन अपने सर मुड़ लिया, कुछ नहीं दिया उनको। ब्राह्मण को सोचना था कि अरे पूरा यज्ञ होने के बाद पहले ब्राह्मण कहेंगे उसके बाद आप लोग कहेंगे, तब तक हम नहीं देंगे करके, ऐसे मन ही मन सोच लिया उन्होंने। तो वापस लौट गए गोप बालक अपने कृष्ण बलराम के पास। तो कृष्ण बलराम ने उनको बोला कि ठीक है तुम ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ, बोला उन्होंने। तो वो उनके पत्नियों के पास गए, तो उस समय पत्नियां अपने घर में विविध व्यंजन भोजन वगैरह बनाकर तैयार रखा था उन्होंने। तब ये गोप बालक आ पहुंचे, उनके पास आकर बोले कि हे माता जी, ये कृष्ण बलराम बगीचे में, कृष्ण ने उनको खास बोला था कि ये मत बोलो कि मैं भूखा हूँ, क्योंकि तुम वो सब मेरे महान भक्त हैं, तुम बोलोगे कि मैं भूखा हूँ वो लोग बहुत दुखित हो जाएंगे। लेकिन गोप बालक जाकर सीधा बोल दिया कि कृष्ण बलराम बहुत भूखे हैं, वो भूल गए वो, ऐसे बोले और बोले कि हम भी भूखे हैं, बोला उन्होंने। बोला कि आप प्रसाद ले लीजिए और बगीचे में आकर हम सबको परोसना आप, ऐसे। तो वो स्त्रियां कृष्ण को कैसे जानती थी, क्योंकि मथुरा के अनेक जो जो लोग बिक्री के लिए आते हैं ना, अलग अलग चीज़ बेचते हैं, जैसे फल वाले या फूल वाली इत्यादि लोग, अलग अलग बेचने वाले, वो लोग गाते गाते आते थे मथुरा से कृष्ण की लीलाएँ। तो ये ब्राह्मण के धर्मपतियाँ जब खरीदती थी कुछ, तब उनको अनेक लीलाओं को सुनने के मौका मिला था। तो इस तरह से सुन सुनकर उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया था। तो जब गोप बालक आए थे इतने उत्साही हो गए वो जाने के लिए, तो गोप बालकों ने उनको बोला कि आप उत्साही हो अच्छा है, लेकिन उत्साह में खाली हाथ मत जाओ, सब भोजन व्यंजन सब लेके जाओ साथ में, इतना नहीं, सिर्फ कृष्ण के लिए मत लेके जाओ, हमको भी लेके जाओ। हाँ, ऐसे वो लोग जोक मारा उनके साथ। हाँ, तो उसके बाद सब वो माताएं गई, तब उन्होंने ये दर्शन देखा उस जंगल में, कृष्ण थे, बलराम थे, सब गोपाल थे, वो पेड़ के नीचे। श्यामम हिरण्य परिध वनमाल्य बरह धातु प्रवालम नटवेश अनुव्रताम से विन्यस्त हस्तितरेण धुनाननाब्जम कर्णोत्पल अलक कपोल मुखाब्जहासम। ऐसे इन माताओं के दृष्टि के द्वारा सुखदेव गोस्वामी देखते हैं और ये श्लोक लिखते हैं। वो बताते हैं श्यामम, भगवान को देखा वो श्याम वर्ण के थे, हिरण्य परिधिम ये कपड़े धोती पहने थे वो, हिरण्य का मतलब सोने के रंग का था वो, वनमाल्य बरह वनमाला पहने थे, धातु प्रवाल उनके आंखों के निकट धातु को लेकर गोप बालकों ने अलंकृत किया था उनके, जैसे वृंदावन में श्याम सुंदर को देखते हैं, ऐसे मायापुर में माधव को देखते हैं आप, ऐसे अलंकार किया था धातु को, धातुओं को लेकर गोवर्धन से। नटवेश एक नृत्य करने वाले नाटककार के रूप में भगवान को सजाया गया था ऐसे। अनुप्रताम से उनके इर्द गिर्द अनेक गोप बालक थे उनके साथ, और भगवान एक हाथ एक गोपाल के कंधे के ऊपर डाला था और दूसरे हाथ में एक कमल लेकर गोल गोल घुमा रहे थे भगवान ऐसे। हाँ, ऐसे दृश्य देखा उन्होंने। और अलग का कपोल का मतलब उनके बाल गुंगराले बाल ऐसे हवा में बह रहा था ऐसा, वो भी देखा उन्होंने। तो खूबसूरत भगवान को देखा, सब परोसा उन्होंने, सब गोप बालकों को, भगवान को, बलराम को, सबको परोसा। लेकिन उधर उस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ये ब्राह्मण लोग जो थे वो लोग यज्ञ कर रहे थे उस यज्ञ पुरुष को, लेकिन वही यज्ञ पुरुष खड़ा था घर के पीछे, ये समझ नहीं पाए वो। जैसे एक मिलिट्री ऑफिसर थे, उसकी पत्नी घर में उनके फोटो को रखकर माला पहनाती थी रोज, उस फोटो को पहुंचती थी वो। तो एक दिन ऐसे ही पहुंच रही थी फोटो को, याद कर रही थी अपने पति को, तो पति आकर खटखटाया दरवाजा पीछे, वो बोली डिस्टर्ब मत करो, बोला उन्होंने। पति बोला मैं पति आया हूँ, बोले डिस्टर्ब मत करो बोल रही हो। तो पति बार बार आवाज करने लगा, तो उसके बाद दरवाजा खोला उन्होंने। पति ने पूछा कि अरे मैं आधा घंटा खड़ा हूँ बाहर, तुम दरवाजा क्यों खोला? बोले कि आपके ही फोटो को मैं पहुंच रही थी, बोला। अरे मैं खड़ा हूँ बाहर, मेरी सेवा नहीं हो रहा, मेरे फोटो का हो रहा, ऐसे बोला। इसी तरह यज्ञ ब्राह्मण जो थे यज्ञ पुरुष को आहुति दे रहे हैं विष्णु को, लेकिन वही विष्णु खड़े हैं उधर बगीचे में, वो जा नहीं रहे हैं उधर। देखिए इस तरह ब्राह्मणों को अनुदित विवेक बोलते हैं इसको, तो उनको अभी तक वैष्णव का विवेक उदय नहीं हुआ उनके, इसलिए इधर हम देखते हैं ये अपक्व ब्राह्मण के ब्राह्मण जो लोग हैं कलयुग में उनके बारे में वराह पुराण बताता है कि असुरों को एक लास्ट चांस दिया भगवान ने, ब्राह्मण के परिवार में जाओ और जन्म लेकर अपने जीवन को यशस्वी बनाओ। लेकिन उधर जाने के बाद भी कुछ कुछ ब्राह्मण लोग हट करके अपने असुरिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी एक चेतावनी देते हैं। देखिए इधर बैठे हुए लोगों में अनेक लोग ब्राह्मण हो सकते हैं, आप बुरा मत माने, मैं भी ब्राह्मण के परिवार से हूँ, कुछ चिंता मत कीजिए आप। लेकिन हमको शंका हो सकता है कि मैं असुर हूँ तो ब्राह्मण के जन्म में घर में जन्म लिया हूँ, नहीं तो मैं अच्छा पुण्य करके ब्राह्मण का जन्म मिला है, ऐसे एक शंका हो सकता है हमारे मन में, है ना। तो शंका होगी तो क्या करना चाहिए, हमको ये मान लेना चाहिए कि हो सकता है हम असुर ही थे पहले, इसलिए थोड़ा असुरी गुण अभी प्रकट हो रहे हैं अभी भी। इस तरह सोचने से हम थोड़ा नम्र बनेंगे, है ना, थोड़ा और भी चेतावनी रखेंगे, सावधानी रखेंगे हम। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्वक्ता प्रभवोपि ही। अनुवाद पढ़िए।
भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते।
देखिए ये श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक है। तिरस्कृता का मतलब अगर कोई आपका अपमान करता है, वैष्णव उस व्यक्ति को बदला नहीं लेता है। जैसे श्रीवास ठाकुर नाम के महान भक्त थे नवद्वीप में, उनके ऊपर ईर्ष्या करता था एक गोपाल चप्पल करके। तो एक दिन उन्होंने सब उधर के नवद्वीप वासियों को दिखाने के लिए क्या क्या उन्होंने कुछ मांस कुछ शराब कुछ कुमकुम इत्यादि रख कर उनके घर के पीछे रख कर दुर्गा पूजा जो होता है उसके आइटम सब रख दिया और घोषणा किया लोगों को, देखो ये श्रीवास नाटक करता है कि वो विष्णु का भक्त है लेकिन वो दुर्गा का भक्त है, मांस खाता सब करता है, इस तरह वो उनका अपमान किया। तो वैष्णव लोग जब घर के बाहर आकर देखा, उनके आंगन में देखा, पीछे ये सब था, तो तुरंत उन्होंने झाड़ू लेकर उसको सफाई कर दिया, वो सब स्थान को, और गोबर डालकर उसको पवित्र कर दिया उन्होंने। लेकिन श्रीवास ने उनके ऊपर श्राप नहीं दिया कुछ, लेकिन कुछ समय के बाद गोपाल चप्पल को कुष्ठ रोग हो गया अपने आप, वैष्णव की निंदा करने के कारण, अपमान करने के कारण। लेकिन वैष्णव कुछ बदला नहीं लेता है, तिरस्कृता विप्रलब्धा। अगर किसी वैष्णव को कोई धोखा देता है ना, तो इधर बोला गया है कि वो उसको भी बदला नहीं लेता। एक उदाहरण दे सकते हैं, एक नाबागा नाम के एक राजा था, उसके बेटा था नाबागा। तो ये नाबागा ब्रह्मचार्य आश्रम में ज्वाइन किया कहीं गुरु के पास जाकर, तो बहुत साल गुरु के आश्रम में रहकर, कुछ कुछ लोग 15 साल आश्रम में रहकर उसके बाद लौट चले जाते हैं अपने घर। तो घर लौट गया, तब पिताजी तब भाइयों ने बोला, अरे भाई तुम इतने सालों के बाद वापस लौट आए हो, धन संपत्ति सब हमने बंटवारा कर लिया आपस में, तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा है हमने, फिर भी हम तुम्हारे लिए एक चीज दे सकते हैं, ये पिताजी को ले लो, बोला उन्होंने। तो बेटा गया नाबागा पिताजी के पास, पिताजी मैं बड़ा धन्य हो गया हूँ, आपको एक बांट करके मुझे दिया है, आपको दिया है मेरे इसके रूप में, मेरे शायर के रूप में। तो पिताजी हंस पड़े, बोले कि अरे मूर्ख बेटे, मुझे लेकर क्या करोगे, मैं बुढ़ा हूँ, लेकिन तुम्हारे भाइयों ने सब जमीन बंटवारा कर लिया अपने आपस में, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम सज्जन हो, नेक हो, प्रामाणिक हो, तो तुम्हारे लिए मैं कुछ तो करूँगा। तो उन्होंने बोला कि मैं तुमको एक मंत्र सिखाऊंगा, इस मंत्र को लेकर तुम उधर चले जाओ एक प्रदेश में, उधर ब्राह्मण लोग अंगिरस यज्ञ कर रहे हैं, छठा दिन पूर्ण आहुति होगा, उस पूर्ण आहुति के समय उनको एक श्लोक लगेगा लेकिन उनको मालूम नहीं है वो श्लोक, और वो श्लोक मुझे मालूम है, मैं दे रहा हूँ तुमको, अगर तुम ये श्लोक को उनको उधर प्रदान कर दोगे तो वो लोग तुरंत बहुत धन दौलत देंगे तुमको, उसको लेकर तुम खुशी से जियो। बेटा गया उधर श्लोक का पन्ना लेकर रखा अपने पास, तो 6 दिन हो गया, छठा दिन पूर्ण आहुति का समय है, सब ब्राह्मण एक दूसरे को पूछ रहे थे वो श्लोक क्या है, श्लोक क्या है, श्लोक क्या है, किसी को मालूम नहीं। तो ये पन्ने को दिखाया उन्होंने, तो पूर्ण आहुति एकदम अच्छी तरीके से हो गया, तो यज्ञ फल भी मिल गया। तो ब्राह्मण लोगों ने नाभा को दिखाया, नाभा का देखो इतना बड़ा पहाड़ के बराबर सोना चांदी था, तो उन्होंने बोला ये सब तुम ले लो, तुम्हारे लिए है, ये यज्ञ से मिला है हमको, हमको भी प्राप्त हो गया, तुमको भी प्राप्त हुआ, तुम ले लो। तो खुश हो गया नाभागे। तो उनके भाइयों को जो मिला उससे भी बहुत गुना ज़्यादा है इधर, तो कपड़े डालकर वो पैक करने के लिए अंदर डाल रहा था, उस समय एक काला व्यक्ति आ पहुंचा उधर, बोला कि ए रुको, बोला तो रुक गए, बोला कि ये सब जो इधर है सोना चांदी पड़ा ये सब मेरा है, बोला। तो नाभाग ने पूछा, अच्छा आपका है क्या, आप थोड़ा रुकिए मेरे पिताजी को पूछ कर आता हूँ, बोला। तो पिताजी के पास गया, आकर पूछा पिताजी को, पिताश्री आपने बोला कि छठा दिन मंत्र देने के बाद जो मिलेगा धन संबंध मेरा है, लेकिन अभी एक काला व्यक्ति आया है, वो शिव जी हैं, वो बोल रहे हैं कि उनके हैं। पिताजी ने बोला हाँ हाँ उनका ही है, बोला पिताजी। बेटा बोला अच्छा उनका है क्या, ठीक है। तो बोला उठ गया, जाकर बोला शिव जी को, बोला कि शिव जी मेरे पिताजी ने बोल दिया कि आपका ही है, आप ले लीजिए, ठीक है आप ले लीजिए, बोला। तब शिव जी हंस पड़े, बोले कि अरे तुम्हारे जैसे सत्यपरायण कोई नहीं होगा इस दुनिया में, ऐसे बोले, क्योंकि देखिए पहले इनके भाइयों ने ठगा इनको, बुरा नहीं माना इन्होंने, उन्होंने सोचा कि पिताजी जब तक है मेरे साथ में खुश हों, ऐसा था वो। इसके बाद पिताजी ने उपाय बताया कमाने के लिए, वो बड़ा सोना चांदी का बड़ा पहाड़ मिल गया उनको, लेकिन वो लेते समय शिव जी आ गए बीच में, आकर बोले कि ये मेरा है। तो पिताजी के पास जाकर पूछा, देखिए अगर आप पिताजी के पास जाकर पूछते हो, पिताजी शिव जी बोल रहे हैं उनका है, पिताजी बोलते हैं हाँ उनका है, तो आप तुरंत पिताजी का कान पकड़ेंगे ना, आप पूछेंगे पहले तो आपने बोला मेरा होगा वो, अभी आप बोल रहे हैं वो शिव जी क्या है, क्या पागल हो गया क्या, क्या भूल गए क्या, हम पूछेंगे कि नहीं, कितने लोग पूछेंगे बोलिए, हम लोग पूछेंगे ना, ऐसे पूछा नहीं उन्होंने। उन्होंने बोला ठीक है पिताजी, अभी आप जो बोल रहे हैं मैं मानता हूँ। जाकर शिव जी को बोला कि पिताजी बोल रहे हैं आपका ही, आप ले लीजिए। तो उनको चिंता भी नहीं कि मेरा क्या होगा, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे नहीं सोचा। तब शिव जी ने बोला हे नाभागा देखो तुम इतना सज्जन हो, तुम्हारे अंदर वैष्णवता है, इसलिए मैं तुमको दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा। तुम्हारे भाइयों को सिर्फ इस दुनिया का धन दौलत मिला, लेकिन मैं तुमको इस पूरा पैसा जो सोना चांदी है वो भी दे दूंगा, साथ साथ दिव्य ज्ञान भी दूंगा। ऐसे बोले, उनको डबल एडवांटेज मिल गया। उनको किसको? नाभाग को। तो नाभाग वो पैसा उसको भी ले लिया, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, बड़ा वैष्णव बना। उसका बेटा था अंबरीश महाराज, इसलिए आप जान सकते हैं अंबरीश कैसे अच्छा भक्त बने हैं। जैसे पिता, जैसे आम के पेड़ से आम निकलते हैं ना, ऐसे। तो इस तरह आप देखेंगे उनके अंदर कितना विप्रल, मतलब उनको चीटिंग किया भाइयों ने, फिर भी वो सहन करने के कारण आगे जाकर वो उनको सब कुछ मिल गया। शप्ताहा का मतलब है अगर कोई आपको शाप देता है तो हम तो पुनर्शाप दे ही देते हैं ना, हा? जैसे एक बार मृत संजीवनी मंत्र सीखने के लिए कच्चा कच्चा नाम का एक ब्राह्मण आया था शुक्राचार्य के पास। तो एक दिन शुक्राचार्य की बेटी देवयानी देख रही थी कि उनके पिताजी के पास आने वाले अनेक विद्यार्थी थे, लेकिन कच्चे से वो प्रेम करते थे। वो एक दिन देखा कि थोड़ा प्राइवेट टाइम मिल गया उनको, तो कच्चे के पास चली गई, बोला कि जैसे आजकल आई लव यू लेटर देते हैं, वो ऐसे नहीं लेटर नहीं दिया उन्होंने, लेकिन उनको सीधा बोल दिया उनको, हे कच्चा मैं इच्छा करती हूँ कि तुम जैसे एक सज्जन ब्राह्मण के साथ शादी करना चाहती हूँ। तो तब कच्चा ने बोला देखो मैं तुम्हारे पिताजी के पास ट्यूशन के लिए आया हूँ, अगर इधर जाकर तुमसे शादी करूँगा तो पिताजी क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये शोभा नहीं देता, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा तुमसे, ऐसे बोल दिया वो। तो देवयानी कुपित हो गई, एक श्राप दे दिया उन्होंने, अरे मूर्ख मुझे शादी नहीं करोगे तुम, मेरे पिताजी से जो भी मृत संजीवनी मंत्र सीखा तुमको काम में नहीं आएगा, जब चाहिए तब काम में नहीं आएगा, ऐसे श्राप दिया। वो बोला अच्छा मैं भी तुमसे कम नहीं है, वो बोला कि मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुमको एक ब्राह्मण मैरिज के जैसे वरण कोई नहीं मिलेगा तुमको, तुमको शादी होगा एक क्षत्रिय से, ऐसे श्राप दिया उसने। इस दुनिया में इस तरह टिट फॉर टैट बोलते हैं ना, एक श्राप देता है दूसरा तुरंत दे देता है ऐसे, है ना। लेकिन आप देखेंगे गरुड़ जी एक बार उड़ते हुए आए यमुना में, उस समय मछलियों ने शिकायत की थी सौबरी मुनि को, एक सौबरी मुनि आप भी तपस्या करने के लिए आए हो, हम लोग भी इधर ही जीते हैं, तो हम हमारी मछली समाज को बचाओ, क्योंकि हम लोगों के बीच में हमेशा डर होता है कि गरुड़ आकर एक एक मछली को उठाकर लेके जाता है। तो सौबरी मुनि ने बोला चिंता मत करो, मैं मछली समाज का एक सोसाइटी बना लूंगा, आप लोगों का लीडर बन जाऊंगा, मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा, ऐसे प्रदान किया। तो एक बार जब गरुड़ आ पहुंचा उधर, तुरंत सौबरी मुनि ने बोला हे गरुड़ अभी से तुमको इधर आना नहीं, क्योंकि मछलियों को मैं सुरक्षा मैं प्रदान कर रहा हूँ, तुम कभी यमुना में मत आना। तो गरुड़ ने सोचा कि अरे मैं आज बहुत भूखा हूँ, प्यासा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, सूर्य बहुत धूप कड़ी है, ठीक है कम से कम आज के लिए एक मछली पकड़ लेता हूँ, बस आगे नहीं आऊँगा। ऐसे सोचकर ऐसे मुख में एक मछली पकड़ लिया, लेकिन वो एक मछली था, वो लीडर मछली था, वो सब मछलियों का थोड़ा मोटा मछली था। वो मछली को उठाकर जब ऊपर उड़ ही रहा था, तब सौबरी मुनि ने उसको एक श्राप दिया, अरे मूर्ख गरुड़ मैं बोलने के बाद भी तुम एक मछली लेके जा रहे हो इधर से, तुम अगले इधर आओगे तुम्हारा सर चूर चूर हो जाएगा, ऐसे उन्होंने श्राप दिया। तो गरुड़ ने मुड़कर देखा उनको, गरुड़ भी सक्षम था श्राप देने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि ये अष्टांग योगी है, तपस्वी है, पानी के अंदर तपस्या कर रहा है, तो इसके पास आकर झंझट में क्यों पड़ने का हमको, ठीक है तब से छोड़ दो इसको, अगर मैं श्राप दूंगा, इसने श्राप दिया मुझे, मैं श्राप दूंगा, पति श्राप देगा, तो इस तरह बार बार झगड़ा क्या करने का, छोड़ दो करके छोड़ दिया। तो ये छोड़ने के कारण गरुड़ जी यशस्वी बन गया, क्योंकि श्राप मिलने के बाद भी पति श्राप नहीं दिया वो। एक दिन मैंने सुना दिल्ली में एक भक्ता अपने कॉम्पाउंड से ऐसे बाहर आ रहा था, तो सड़क में तेजी से एक कार चल रहा था, ऐसे सड़क में करके सब, तो ये अंदर से आया ऐसे, तो दोनों कार ऐसे टुकराने ही वाले थे, लेकिन टुकराए नहीं, एकदम निकट ऐसे एक दूसरे को टच करते हुए ऐसे निकला है, कुछ बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो गलती किसका था, इसका था, इसका था, हाँ अंदर से आए उसका था वो, तो उसको सड़क देख कर आना चाहिए ना, ऐसे आ गया, लेकिन वो भक्त था, ये अभक्त था, ये जैसे आने वाला। तो ऐसे आने के बाद ये अभक्त लोग गाली देते हैं, आप लोग जानते हैं ना, अगर गलती से कोई कह रहा है तो अभक्त उसको मुड़कर देखा, बोला कि अकल है क्या, ऐसे पूछा उसने। तो हमारे भक्त ने क्या किया, हाथ जोड़कर ऐसा किया, सर झुका, ऐसे ऐसे सर झुककर 5 सेकंड के लिए झुका हो, ऐसे सर उठाकर देखा, वो गाड़ी था ही नहीं, वो निकल गया था वो, क्योंकि वो समझ लिया कि मैं इसको डांटा, लेकिन ये तो एकदम शांत आदमी है, कुछ मजा नहीं इसके साथ झगड़ा करने में, है छोड़कर निकल गया वो। इसलिए आप देखेंगे दो हाथ से ही, हाँ तो एक हाथ ताली बजना चाहता है, दूसरा चला जाता तो झगड़ा किधर। हाँ, इस तरह से भक्त लोग सहन कर लेते हैं, बोलता है ऐसे, बोलते हैं ऐसे, हाँ ऐसे बोलते हैं क्षिप्ता, ये बताते हैं। अगर कोई आपको नकारते हैं, वैष्णव को मान सम्मान नहीं देते हैं, तिरस्कार करते हैं, नकारते हैं, तो वैष्णव लोग परवाह नहीं करते हैं। अगर कोई उनका आदर भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो आदर की अपेक्षा ही नहीं रखते वो, इसलिए अगर कोई आदर भी नहीं देता, वो अपमान को लेते नहीं ऐसे। आगे बताते हैं हता भी, जैसे अम्बरीश महाराज को हता मारने के लिए प्रयत्न किया था, कौन, दुर्वासा ने, फिर भी उन्होंने, वो दुर्वासा ने अंत में बोलते हैं, वो लीला के अंत में सब लोग बोलिए, बताते हैं अहो अनंत दासानाम महताम दृष्टमध्य मे कृतागसोपियद राजन मंगलानि समीहसे। वो बताते हैं कि हे राजन अम्बरीश, मैं तुमको मारने के लिए योजना बनाया, लेकिन तुम मुझे बचाने के लिए योजना बनाया, तुम कितना महान हो, मैं अवैष्णव हूँ, मैं तुम वैष्णव हो, इसलिए तुम्हारे हृदय कितना कोमल है, ऐसे एक आपको हताहा मारने के लिए जो आया है उसको भी आपने बचाया, इस तरह का वैष्णवता मैंने कहीं नहीं देखा है। अभी मैं प्रसाद पाकर सिद्ध लोग जा रहा हूँ, लेकिन उधर जाकर ये पूरा कथा ए टू सेट बोल दूंगा उनको, सिद्ध लोग के सब सिद्धों को, क्योंकि तुमसे मिलकर हम बहुत प्रसन्न हुए, हमारे चित्त बहुत शुद्ध हुआ, क्योंकि तुम नाम जप कर तुम शुद्ध हो गए हो। यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल है, उधर ही बोलते हैं वो श्लोक, नाम श्रुति से चित्त निर्मल होता है, ये दुर्वासा नहीं बोलते हैं अम्बरीश को, तुम नाम ले लेकर तुम्हारा चित्त जैसे माखन जैसे बन गया है कि कृष्ण ने चोरी कर लिया तुम्हारे चित्त को, इसके कारण तुम इतने पवित्र हो, निर्मल हो, शांत हो, सहिष्णु हो, कृपालु हो, दयालु हो, इस तरह दुर्वास भी उनकी गुणगान करते हैं, इस तरह वैष्णव की गुणगान हो रहा है इधर, और इसी तरह परीक्षित भी के अंदर भी इस तरह का गुण था। इति पुत्र कृता कृताघेन सोनु सोनु तप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवागम तदचिंतयन्। हाँ पढ़िए।
इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया, उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया।
प्रायश साधवो लोके परैर्द्वंद्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यद आत्मा गुणाश्रयः।
सामान्यतया अध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, न ही वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे अध्यात्म में लगे रहते हैं।
हाँ देखिए, जो लोग अध्यात्म में लगे हैं वो लोग दूसरे लोगों से प्राप्त हुए दुख को गंभीरता से लेते नहीं, ये बताते हैं। जैसे मैं ये उदाहरण जरा जोर से सोचिए आप लोग, ये अगर ये कमरे में सब दरवाजा लॉक किया है बाहर से, आप बाहर नहीं जा पाओगे, अगर अचानक चारों दिशा से आग आ रहा है तो आपको भागने के लिए बचाने के लिए कुछ उपाय नहीं, लेकिन ये एक बड़ा छिद्र है बीच में और एक बड़ा सीढ़ी पड़ा है नीचे, वो सीढ़ी को लेकर आप उधर रखेंगे बीच में, तो सीढ़ी से चढ़कर आप ऊपर पहुंच जाओगे, ऐसे एक छिद्र है बीच में, तो आप सीढ़ी को भी उठा लिया, सीढ़ी को लगा दिया आपने, और इधर सैकड़ों लोग बैठे हैं, सब लोग सीढ़ी से चढ़कर बाहर जाना चाहते हैं, आग से बचना चाहते हैं, लेकिन आप सीढ़ी में दो पांव रखा आपने, बीच में कोई आपको मजाक उड़ा रहा है, कोई आपको निंदा कर रहा है, कोई आपको गुदगुदी कर रहा है, गुदगुदी मालूम है आपको, ऐसे कर रहा है, तो आप क्या करोगे? जो गुदगुदी कर रहा है उसको एक लाफा दे सकते हो, जो आपको निंदा कर रहा है उसको गाली दे सकते हो, कोई आपको मजाक उड़ा रहा है उसको प्रूव कर सकते हो कि आप कितने सज्जन हैं, बड़े हैं। ऐसे अगर ये सब प्रूव करने के लिए आप उधर जाओगे नीचे, उनके कॉलर पकड़ोगे, तो आप भी जल जाओगे, वो भी जल जाएगा, है ना। लेकिन बुद्धिमानों को क्या करना चाहिए? उसको सहन करते ही ऊपर चढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए? पहले जान बचाओ, बाद में सब सुनाओ, है ना। ऊपर चढ़ जाना चाहिए उसको, हाँ ऐसे। इसलिए शास्त्र भी क्या बताते हैं, जिदात्मन प्रशांतात्मा परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। हे अर्जुन, इस दुनिया में शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान इत्यादि सब जीवों को सहन करना पड़ता है, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में हैं वो इस दुनिया के यश, ये दुनिया के लोग जो उनको अपमान करते हैं, मान सम्मान देते हैं, नहीं तो सुख दुख देते हैं, इसको परवाह ही नहीं करता है, वो सीधा ऊपर भगवत नाम लौटने के लिए वो मार्ग बनाता है। इस दुनिया के से दूसरे लोगों से सृष्टित दुखों को वो गंभीरता से नहीं लेता। क्यों? क्योंकि इधर डिशम डिशम करते समय हम ऊपर जाने का काम बंद हो जाएगा, समझे ना आपने। आपको दो ही मार्ग है, जैसे जरा सोच लीजिए, आपके झोपड़े के ऊपर किसी ने आग लगा दिया, अभी आपको आग बुझाने के लिए आपने ये वाटर जेट लाया है, आपको वाटर जेट डालकर उसको बंद करना है, लेकिन जो व्यक्ति ने आग लगाए वो अभी देख रहे हो कि भाग रहा है वो, आप उसके पीछे भाग कर कालर पकड़कर मारोगे उसको, तमाचा दोगे, नहीं तो आप आग बुझाओगे, क्या करोगे आप? कितने लोग आग बुझाएंगे? हाँ, कितने लोग उसके पीछे पड़ेंगे? कोई है इधर? कोई नहीं है, सब लोग समझ गए, संसार दावा नालक, आग पड़ा है, आग को बुझाओ पहले, लोगों के पीछे मत भागो। और लोग जो हमको डांट भी दे रहे हैं, हम सोच सकते हैं कि वो पूर्व जन्म का ही कुछ नतीजा हमें आ रहा है, जैसे पोस्टमैन आकर आपको बड़ा बिल देकर जा रहा है, ऐसे ये लोग दे रहे हैं करके सोच लेना चाहिए, क्योंकि कलयुग के जमाने में समय बहुत कम है, झगड़ा करने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए हमें भागवत पढ़ना, नाम जपने में समय बिता देना चाहिए और भगवतधाम लौट चलना चाहिए। इस तरह परीक्षित ने भी यही सोचा, अपने महल पहुंचने के बाद बैठ गया, सोचा कि अगर वो मुनिवर ध्यान में अगर बैठे थे तो मैंने बड़ा गलती कर दिया है, अपमान कर दिया है उनकी, इसलिए दंड मेरे ऊपर हो। तो प्रभुपाद जी उधर लिखते हैं कि रिपेंटेंस कम्स इन द हार्ट ऑफ अ गुड सोल। अभी हम अगले सत्र में 19वां अध्याय पढ़ेंगे, उधर हम लोग सुनेंगे कि परीक्षित की मनोभाव, उनके मनोगति क्या था। बहुत सुंदर वक्ता है परीक्षित, वो पश्चाताप करता है, उसके बाद उसके आंखों से आंसू बहता है, गर्म आंसू बहता है, सोचता है कि मैंने गलती कर दिया है इसे। लेकिन आप लोगों को पिछले सत्र में मैंने बोला कि ये परीक्षित की गलती नहीं था, क्योंकि परीक्षित जैसे शुद्ध भक्त को प्यास भूख कभी होता ही नहीं, प्रभा जी बोलते हैं। इतना ही नहीं, उसके जीवन में कभी रिकॉर्ड ही नहीं कि किसी ब्राह्मण को उसने अपमान किया है। इतना ही नहीं, वो खास करके ब्राह्मणों को आदर देता था, सम्मान देता था, वो कभी इस तरह का बर्ताव कर नहीं सकता वो। ये सर प्रभा जी लिखते हैं, ये सब हुआ है क्यों? क्योंकि भगवान का एक सृष्टि है, इस तरह भगवान ने उनको हृदय में प्रेरणा दिया कि इधर एक मृत सांप पड़ा है, उसको उठाओ और ये ऋषि के गर्दन में लगाओ करके भगवान कृष्ण उनके उनके हृदय में खड़े होकर उनको एक प्रेरणा दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये भगवान का इच्छा था कि परीक्षित का जमाना पूरा हो, कलयुग का जमाना शुरू हो जाए और परीक्षित 7 दिन एक आदर्श राजा बनकर गंगा के तट में बैठकर सुखदेव गोस्वामी जी के मुखारविंदों से भागवत कथा सुने, बाकी ऋषि मुनियों को भी लाभ हो। और जब भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं अपने धाम लौट कर जा रहा हूँ, मैं जब निकल जाऊँगा सारे दुनिया में अंधकार छा जाएगा, इसलिए इस अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ये भागवत प्राप्त होना आवश्यक है। और परीक्षित भी मृत्यु के निकट होने के कारण एकदम गंभीर बनकर अनासक्त हो, दुनिया से अनासक्त होकर कृष्ण के श्री चरणों में अपने बुद्धि मन अपने प्राण इत्यादि को लगाकर अच्छे अच्छे प्रश्न पूछेगा, सुखदेव गोस्वामी अच्छे अच्छे जवाब देंगे, और आने वाले पीढ़ी जो है कलयुग की पीढ़ी में लोगों को ये भागवती एक रोशनी प्रदान करेगा, और लोगों के जीवन में लोग भी इसको पढ़ेंगे और समझ जाएंगे कि भगवान की कथा की महिमा और भगवान के धाम की महिमा, भगवान के गुणों की महिमा पढ़ेंगे लोग। ये भगवान का आयोजन था और परीक्षित को उन्होंने निमित्त बनाया, और ये भगवान ने परीक्षित के हाथ पैर को ऐसे चलाया उन्होंने कि उन्होंने इस तरह का कार्य किया जो बाहरी रूप से ऊपरी रूप से देखने से लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, लेकिन शुद्ध भक्त कभी गलती नहीं करते, भगवान के हाथ में कठपुतली बनते हैं, यही उनका स्थिति है। इस तरह प्रभुपाद जी समझाते हैं अच्छी तरीके से। तो अगले सत्र में हम पहले स्कंद को हम पूरा कर देंगे, पहले स्कंद में अनेक अलग अलग अध्यायों को पढ़ा हमने, तो अगले सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, जिधर परीक्षित पहुंच जाता है उधर गंगा के तट में सब ऋषि मुनियों के बीच में, सुखदेव गोस्वामी आ पहुंचते हैं, उनके साथ उनका बर्ताव बहुत बढ़िया वार्तालाप होता है, ये सब हम अगले सत्र में हम पढ़ेंगे। तो आज के सत्र में खास करके हमने श्रृंगी के गलत अपक्व असंस्कृति, तो उसके संबंध में पढ़ा हमने कि अपशब्द इस्तेमाल नहीं करना, और सोच विचार किए बिना निर्णय न लेना, छोटे चीज के लिए बड़ा क्रोध मत दिखाना, इत्यादि हमने सीखा। साथ साथ समीक ऋषि से हमने सीखा कि छोटे चीज़ों को छोटा ही लेना चाहिए, उन्होंने महत्व ज़्यादा नहीं दिया है वो मृत सर्प के लिए, लेकिन इसके विरुद्ध परीक्षित महाराज के ऊपर बहुत आदर था, उनके हृदय में प्रेम था, आदर था। तो इस तरह हम ये भी सीखा कि वैष्णवों की आदत क्या होता है, तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दाक्षिप्ता हतापि नास्य तत्पति कुर्वन्ति तद्भक्ता प्रजो प्रभवोपि ही, ऐसे बताते हैं। तो हम लोग वैष्णव की पथ को पकड़कर चल रहे हैं, इस तरह के महात्मा पुरुषों से सीखने लायक बहुत कुछ सीखा है भागवत के पहले स्कंद में।